पूंजी भर ले अंतर में, कुछ ही पल है पास तेरे। ओ पुण्य की पूंजी भर ले अंतर में, कुछ ही पल है पास तेरे। जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा क्या होगा कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो आशा से अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसे अपनी, परम पिता को याद कर। परम पिता को याद कर, परम पिता को याद कर।
बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई जी। हम सबके बीच हमारी आदरणीय आशा दीदी जी उपस्थित हो चुके हैं। हम सभी एक हाथ की ताली बजाकर दीदी को दिल से स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है दीदी। अब मैं निवेदन करती हूँ हमारी मुलुंड से आए हुए सरला दीदी और बीके सिस्टर्स से, वे आए मंचासीन सभी भाई बहनों का बुकेज और बैजेस के द्वारा स्वागत करें। बहनों से निवेदन है मंच पे आएं। धन्यवाद बहनों को। जोरदार करतल ध्वनि से सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। शांति। आज बहुत सुंदर पवित्र समय है जिसमें एक सुंदर सा टॉपिक लिया है जो आप सभी देख सकते हैं, योगा कर्मेशु कौशलम। वैसे भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक जो है उसमें भगवान कह रहे हैं कि कदमन्ये वाधि के रस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू कर्म किए जा, क्योंकि कर्म पे तेरा अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। इसलिए बिना कर्म फल की आशा रखे अच्छा बुरा क्या मिलने वाला है और सोचे बिना तू कर्म किए जा। लेकिन वही 50वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, योगः कर्मेषु कौशलम्। तो अगर योग युक्त होकर के कर्म करेगा तो कुशल कर्म होंगे। तो ये कुशल कर्म क्या है, हम किस रीति से अपने कर्मों को कुशल कर सकते हैं। परमात्मा ने हमें उस योग की विधि बताई और उसका साइंस भी बताया कि जब आप योग युक्त होकर के कर्म करते हैं तो आपके कर्म कुशल कर्म होते हैं। और आज इस सब्जेक्ट को बहुत सुंदर रीति से हम सबके सन्मुख रखने के लिए हमारी आदरणीय आशा दीदी जी उपस्थित हैं। हम सभी आशा दीदी को जानते हैं क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के चेयरपर्सन हैं। और जो आज का कार्यक्रम चल रहा है, ये जो त्रिदिवसीय प्रोग्राम चल रहा है, आप उसकी डायरेक्टर भी हैं। आप ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो कि दिल्ली गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में है, आप उनकी भी डायरेक्टर हैं। दीदी चेयरपर्सन हमारे आईटी विंग राजयोग एजुकेशन का जो आईटी विंग है उसकी भी आप चेयरपर्सन हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो भी टीचर बहने हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग है तो आप ट्रेनर भी हैं। हम सबको आपने बनाया है, गढ़ा है और अनेक विशेषताओं से संपन्न है दीदी। एक बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक बहुत अच्छी स्पीकर हैं। हम सभी आज बहुत भाग्यवान हैं दीदी हमारे बीच में हैं। तो मैं आदरणीय दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि आज के इस टॉपिक पे प्रकाश डालें, कर्मण्य वाधि के रस्ते माँ फलेषु कदाचन और योगः कर्मेषु कौशलम्। दीदी जी
ओम शांति, इतनी ठंडी ठंडी ओम शांति, ओम शांति। मंच पर विराजमान हमारे सभी अनुभवी प्रशासक वर्ग और सभा में उपस्थित हर कोई प्रशासक है, आप सभी प्रशासक वृंद और प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, इस समय जो विषय दिया गया कॉन्फ्रेंस के अंतिम सत्र का है, योग से हम कार्य कुशल कैसे बनते हैं और योग से हमारे में कौशल कैसे जागृत होता है, स्किल, स्किल डेवलपमेंट पर हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है। लेकिन उसका आधार हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में दिया हुआ है। जब योग कहते हैं तो योग से अभिप्राय शारीरिक क्रिया प्राणायाम तक सीमित नहीं है, निसंदेह ये चीज भी बहुत लाभदायक है, काम की है। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कार्य भी अच्छा कर सकेंगे, शरीर ठीक होगा अच्छी सेवा कर सकेंगे, परंतु आपने इस कॉन्फ्रेंस में सवेरे के सेशंस में मेडिटेशन कहो, अगर आप सच पूछो तो मैं मेडिटेशन शब्द का भी उपयोग करना नहीं चाहती हूं। भिन्न भिन्न प्रकार के मेडिटेशन डेवलप हो गए और कमर्शियलाइजेशन हो गया है, ये भी एक बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो गई है। वो सुंदर शब्द योग, जिसका अर्थ है जोड़, संबंध, किसका किसके साथ जोड़, सवेरे के सेशंस में बहनों ने आपको बताया है कि मैं कौन, आत्मा, और मुझ आत्मा का संबंध किसके साथ, जोड़ किसके साथ, परम आत्मा के साथ, जो सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, परम है, सुप्रीम है, महात्माएं, देवात्माएं, धर्मात्माएं, पुण्य आत्माएं, पाप आत्माएं, आप कभी नहीं कहते परमात्माएं, सिंगुलर, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हम आत्माओं के पिता हैं। और हम आत्माओं के पिता के पास क्या कुछ है, अखुट भंडार है। किस चीज का, गुणों का, शक्तियों का, कौशल का, नवीनताओं का, आदि क्या नहीं है उसमें। अब अगर मुझे उनसे कुछ प्राप्ति करनी है तो मुझे याद करना होगा, उनके साथ संबंध जोड़ना होगा, इसका नाम योग है। आप यहां बैठे हुए दिल्ली कई बार जाकर के वापस आ जाते हो, यहां बैठे हुए अपने किचन में जाकर के वापस आ जाते, उठते नहीं, कहीं नहीं जाते, आप मन से जा रहे हो। ये मन इतना शक्तिशाली, इतना ब्यूटीफुल फैकल्टी है, जिसके अंदर नवीनता क्रिएट करने की, शांति, प्रेम, सद्भावना, सब कुछ इस मन के अंदर है। लेकिन हमारी कंप्लेंट क्या है, ये मन भटकता बहुत है, याद में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, भटकता है, एकाग्र नहीं होता। इसके लिए चाहिए अभ्यास, आप सबने यहां सुना, अभी मैं फीडबैक लेके आ रही हूं। फीडबैक में आपके जो गाइड्स, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में बताई। अच्छी बात अच्छी ही होती है, सवाल ये है उसको हम सस्टेन कैसे करें, उसको हम मेंटेन कैसे करें, यही बात है ना। न्यू ईयर पर आप सबने कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लिया होगा। कितनों को याद है आपने क्या रेजोल्यूशन लिया था? भूल गए। क्यों भूल गए? रिवाइज नहीं किया। ऐसे ही यहां आपको मेडिटेशन की, योग की विधि का केवल ट्रेलर दिखाया है। ट्रेलर होता है ना फिल्म का, केवल आपको ट्रेलर दिखाया है। इसके पीछे पूरी विधि है, पूरा ज्ञान है। अब उसको तो पाने के लिए समय निकालना होगा, निकालना होगा। अगर उसको पूरा समझना है और उससे पूरा लाभ लेना है तो समय तो निकालना होगा। एग्री? एक बार एक व्यक्ति था, वो वॉकिंग पे निकला तो उसने क्या देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। शाम को व्यक्ति वापस लौटता है, जब तो देखता लकड़हारे ने बहुत थोड़ी सी लकड़ी काटी है। तो वो सज्जन बोले कि भाई तुम सवेरे मैंने देखा, अभी देख रहा हूं, कुछ खास तो हुआ नहीं, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि यू शार्पन योर सॉ, जिससे आप काट रहे हो उसको थोड़ा शार्प करो, उसका वो बनवा लो, जो आप कहते हैं धार बनवा लो। उसका जवाब क्या था? हु हैज टाइम फॉर इट, उसके लिए समय कहां है। ये बात आपकी तो नहीं है कहीं, आप लोगों की तो नहीं है ना ये बात? क्या है बोलो भाई, क्या बोलते हैं, समय है या नहीं है? सबसे पहली चीज, आप मालिक। अगर आप ही ठीक नहीं होंगे, टेंशन में होंगे। आज दोपहर में मैंने एक न्यूज देखी कि हमारी यूथ जो डिप्रेशन की या दुख भरी बातों की एज हुआ करती थी, इट यूज टू बी फ्रॉम 40 to 50, जिसमें लोगों को सामना करना पड़ता था, चैलेंजेस होते थे आदि आदि। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च सर्वे क्या बता रहा है, हमारी यूथ एज ग्रुप ऑफ 20 to 30 डिप्रेशन में और अपने को बहुत दुखी समझ रहे हैं। अगर यूथ का यह हाल है तो देश का क्या हाल होगा? सार ये है, सब चीजों पर ध्यान जा रहा है हमारा, लेकिन अपने प्रति ध्यान नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस से अगर आप इतना टेक अवे लेते हैं, कहते हैं व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस, दिस इज द टेक अवे, कि मैंने अपने आप को समय देना है, आधा घंटा। आप समय देंगे, योग का जो सारा विस्तार है उसे समझेंगे, तब यह योग आपके कर्म में दिखाई देगा। मैंने उस दिन कहा था, हम कहते कर्म ही पूजा है। पूछ के देख लो अपने आप से, कर्म पूजा है? वर्कहोलिक हो जाते हैं क्या? कर्म पूजा रह गई है? सो प्यारे भाइयों बहनों, अपने अनुभव के आधार से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। स्वयं को समय देना आज की डेट में अति अनिवार्य है। आप सवेरे दो, शुरुआत करो अच्छी बात से, सारा दिन आपका अच्छा रहेगा। योग से आरंभ करिए, सारा दिन आपका बहुत अच्छा होगा। हम सब यहां पे 3:30-4 बजे आप देखते हो लोग उठते हैं, बैठते हैं, योग में बैठते हैं, कुछ प्राप्ति तो ना। और कहा जाता है अर्ली मॉर्निंग ब्रेन ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमारी क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस, उन सब के लिए आवश्यक होते हैं। अगर हम उस समय सोए रहेंगे तो वो जो हमारे हार्मोन्स हैं, जो वो सेक्रीशंस हैं, उनका फायदा मैं कैसे लूंगी? एक चीज। दूसरा, जिसको मैंने कहा अभ्यास। अभ्यास क्या करना है? आप ऑफिस में बैठते हो, पानी पीते हो, बीच बीच में पानी पीते हो, वो भी भूल जाते हो, पानी पीते हो, फोन कॉल अटेंड करते हो, कभी कोई आता उससे मिलते हो, सब करते हो ना। उसी समय एक लक्ष्य रख लीजिए। आजकल मैंने देखा यूथ मोबाइल लेके जब घूमते हैं तो कभी मेरे हाथ में कोई मोबाइल होता है, इट्स टाइम टू ड्रिंक वाटर, उसमें आता है, मोबाइल पर आ जाता है, इट्स टाइम टू ड्रिंक वाटर। अगर मोबाइल पर ये वाटर ड्रिंकिंग आ सकती है तो हम अपने कंप्यूटर में सेट कर सकते हैं, हर 2 घंटे के बाद मैं थोड़ा साइलेंस में। मुश्किल क्या है? 3 मिनट हम ऐसे ही गंवा देते हैं। वो 3 मिनट आप डीप साइलेंस का अभ्यास करें, मेडिटेशन का अभ्यास करें, डीप ब्रीदिंग करिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपको नवीनता इमर्ज होगी, सॉल्यूशंस इमर्ज होंगे, साथ ही साथ रेन्यूड एनर्जी आप महसूस करेंगे। हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, जो अब तो नहीं हैं, उन्होंने इस बात को समझा था। यहां आए थे, दादी जी ने उनसे पूछा, साइंटिस्ट साइंस बड़ी या साइलेंस? तब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, डीआरडीओ चीफ थे, कॉल ऑफ टाइम डायलॉग में आए थे। वे बोले साइंस। दादी ने दोबारा बोला, वे पक्के साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर बोला साइंस। दादी जी ने तीसरी बार बोला साइंस या साइलेंस। अब उन्होंने समझा कोई राज होगा जो दादी बार बार पूछ रही है, वे चुप हो गए। बहुत वर्षों के बाद जब वो प्रेसिडेंट बने, तब उन्होंने मेरे से कहा, मैं अब समझा हूं आपकी संस्था में साइलेंस को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। ये उनके वर्ड्स थे, साइलेंस योग आपके अंदर नई ऊर्जा उत्पन्न करती है, आपकी एकाग्रता की शक्ति 100% बढ़ेगी। आप करके देखिएगा, बुद्धि मन एकाग्र होगा, और अगर मेरा मन और बुद्धि एकाग्र है तो स्वाभाविक है मेरा कर्म में क्या आएगा, एक्यूरेसी आएगी। अप्रोप्रिएट जो चीज होगी वो मैं करूंगी। एकाग्रता होगी, कार्य कुशलता होगी। एकाग्रता होगी तो अर्जुन की तरह आप में वो कौशल होगा। अर्जुन से जब पूछा गया, सब पांडवों से पूछा, तुम क्या देख रहे हो? मैं चिड़िया देख रहा हूं, चिड़िया की आंख देख रहा हूं, पेड़ भी देख रहा हूं। गुरुजी बोले आ जाओ बेटा। दूसरे से पूछा, उसने कहा गुरुजी आपको भी देख रहा हूं। गुरुजी ने कहा तुम भी आ जाओ। जब अर्जुन से पूछा तो उसने क्या कहा, चिड़िया की आंख का तारा देख रहा हूं। इतनी एकाग्रता। तब गुरु ने कहा तीर लगाओ। ये कौशल, ये स्किल कहां से आई? मन की एकाग्रता, योग। आपके कर्मों में कौशल आएगा जब आप, जो बहन कह रही थी श्रीमद् भगवद गीता को कोट कर रहे थे, तो कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। राइट बात है। कर्म आप कैसे करेंगे? आपके कर्मों में भी विशेषता, विलक्षणता चाहिए। मैं अक्षर यूज करूंगी विलक्षण। कार्य तो सभी कर लेते हैं, काम तो सभी कर लेते हैं। आपके कर्म में कौशल दिखाई दे उसके लिए कुछ तो विशेष चाहिए। न्यारापन और निरालापन। न्यारापन कहां से आएगा? पेपर, फाइल, प्रॉब्लम, सब कुछ वही है, लेकिन जब आप स्वराज अधिकारी के आसन पर बैठ करके सेल्फ रूलर, सेल्फ सॉवरन के आसन पर बैठ करके कर्म करते हैं, वही कर्म आपके कुशलता और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। बोलना है, एक है आम व्यक्ति की तरह बोलना, एक योगी का बोलना, दोनों में अंतर दिखता है आपको? वो चीज आपके अंदर आनी आरंभ हो जाएगी। क्या कारण है? वक्ता अनेक होते हैं। जब हमारी बड़ी बहनें बोलती हैं, दादियां बोलती हैं, चार शब्द बोलती हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। क्या चीज है? योग युक्त कर्म है, योग मुक्त नहीं, योग युक्त। प्रभु की याद, अपनी याद, और तब वो कर्म करते हैं, तब वो बोलना है, नेचुरल कुशलता है। साथ ही साथ निमित्त भाव, निमित्त। हमारी प्रेसिडेंट क्या कहती हैं? मैं इस गद्दी पर हूं लेकिन मैं निमित्त हूं, ये उनके शब्द, मैं निमित्त हूं, मैं राष्ट्रपति सदा काल के लिए नहीं हूं, मैं निमित्त हूं। ये भान निमित्तपन का, और उसमें अहम ना आए, मैं पन ना आए, ये भी विशेषता है। ये तभी संभव है जब आपके अंदर इतनी शक्ति, जो पोजीशन आपके सिर पर हावी ना होने पाए, वो शक्ति होती है। वो शक्ति हम डिवेलप करते हैं योग के आधार से। जब निमित्त समझ करके करते हैं, आप ये देखिए, एक कैशियर करोड़ों रुपए गिनती करता है, एक रुपया उसका नहीं है, करोड़ों रुपए गिनती कर रहा है। निमित्त, हम अपने सब कर्म करेंगे, अच्छे से अच्छे करेंगे, लेकिन वो मुझे अपनी तरफ खींचे नहीं, मैं निमित्त होकर के करूं। साक्षी दृष्टा, स्वयं को निमित्त, दूसरों के प्रति साक्षी दृष्टा। हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, आपके जूनियर हो सकता है बगावत करते हो, आपके साथी हो सकता है जेलसी के कारण से कोऑपरेट ना करते हो, बहुत बातें होती हैं, परंतु साक्षी होके हर एक के पार्ट को देखिए। आप उन्हें बदल नहीं सकते, ये पाठ कि मैं किसी को बदल सकती हूं, ये झूठा पाठ है। बदलना ना बदलना उस व्यक्ति के हाथ में है। आप इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, आप किसी को बदल नहीं सकते। टेंशन क्यों लेना, साक्षी होके हर एक को ये शक्ति चाहिए। ये शक्ति योग से आपकी डिवेलप होगी। इसी रीति से फ्लेक्सिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटर्स को डिटर्मिंड भी रहना पड़ता है डिसीशन मेकिंग में, और आपको फ्लेक्सिबल भी रहना पड़ता है, दोनों। यहां हमारा ईगो हमारे आगे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, व्हाई शुड आई चेंज माय डिसीजन। जब हमारा लर्नर एटीट्यूड होता है, जब हमारा लिसनिंग का एटीट्यूड होता है, जब हमारा औरों को एक्सेप्ट करने का एटीट्यूड होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी स्वाभाविक हो जाती है। ये भी चाहिए योग के द्वारा। अधिक न कहकर मैं कहना चाहूंगी, अपने मन को शांत रखना है, शांत चित्त होना है, शांत चित्त होना है। अपने आप से बातें करिए, आप स्वयं के सबसे बड़े टीचर हैं। जो पाठ आप स्वयं को पढ़ा सकते हैं, वो हम दूसरों से नहीं पढ़ सकते। स्वयं के शिक्षक बने। ये सब चीजें हम योग के अभ्यास से अपने व्यक्तित्व में उतारते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता। थोड़ा समय दीजिए, अभ्यास करिए। ट्रैफिक कंट्रोल की बात मैं समझती बहनों ने बताई होगी, यदि नहीं बताई तो अवश्य बताएं। इस समय का उपयोग करिए। याद करिए, बचपन में हम एक खेल करते थे, 9 पॉइंट्स हमको ज्वाइन करने होते थे, याद है 9 पॉइंट्स होते थे, कहा जाता था इनको ज्वाइन करो पेंसिल को उठाए बिना, और उसकी विधि क्या थी, 9 पॉइंट से बाहर जाना होता था, बाहर जाके फिर हम ज्वाइन करना शुरू करते थे तो वो सारे ज्वाइन हो जाते थे। इसी रीति से जब आप प्रॉब्लम में हैं, जब आप चैलेंज में हैं, जब आप उसकी ऑन गोइंग प्रोसेस में हैं, उस समय आप सोचो अभी मैं बैठ के मेडिटेशन करूं, होने वाला नहीं है। सामने आग लगी है, आग को बुझाना पहला काम है ना, या बैठ के मैं योग करूं उस समय आग बुझ जाएगी, ये बुद्धिमत्ता नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी। आग को बुझाने के लिए मुझे इमीडिएटली क्या करना है वो मेरे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, और वो चीज तब अपीयर होगी जब हम पहले योग की साधना करेंगे तो राइट टाइम पर राइट बात आपको अपीयर। आप सब भाई बहनों से एक बहन के नाते मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप हमारे बहुत वैल्यूबल भाई बहन हो, देश के कारोबार को चलाने वाले हो, आप सब टेंशन में रहो, तनाव में रहो, ये हम बहने नहीं देख सकते। थ्री ए सिंड्रोम अप्लाई करिएगा। अगर आप किसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड इट। दूसरा, अगर आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं, ऑल्टर इट। अगर ना अवॉइड कर सकते हो ना ऑल्टर कर सकते हो, देन एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करिए, स्वयं को सशक्त करिए, एंड देन योग उस तरीके की चीज नहीं है। अभी ये घटना घटी, मैं योग लगाऊं तो हो जाएगा, जैसे लोग कहते हैं कि भाई ये करो, ये पूजा करो तो इससे ये खत्म हो जाएगा, योग वो चीज नहीं है। योग हैज टू बी इंटीग्रेटेड इन योर लाइफ, इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। योगी लाइफस्टाइल है, योगी एटीट्यूड है, ठीक है। मुझे विश्वास है आप सब जब अपने अपने स्थानों पर लौटेंगे, जहां भी आप जाएंगे वहां हमारे केंद्र हैं, बहनों को संपर्क करिएगा और अभ्यास के लिए वहां पर जाएं, गाइडेंस लें। एक बार आप सीख लेंगे तो आप कहीं पर भी होंगे ना तो कर सकेंगे, लेकिन शुरू में तो स्कूल में जाना पड़ेगा ना, तो अवश्य इस चीज का लाभ लीजिएगा। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी को, बहुत सुंदर रीति से, बहुत सरलता से आपने हमें बताया कि हम अपने कर्मों को कैसे कुशल करें, और जब योग करते हैं तो कर्म में कैसे कुशलता आती है। जब हम योग करते हैं तो अपने लिमिट से बाहर जाते हैं, और वो जो अनलिमिटेड पावर है वो हमें कर्म को कुशल करने में सहयोग करता है। बड़ा सुंदर आपने एग्जाम्पल दिया 9 डॉट वाला, 9 डॉट्स जब हम जोड़ते हैं तो अगर हम वैसे 9 डॉट्स को जोड़ना चाहे नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन एक ट्रिक है उसका कि जब आप बाहर निकलते हैं तो विदाउट क्या कहें शिफ्टिंग द पेन आप वो 9 डॉट्स को जोड़ सकते हैं। तो वैसे ही जीवन में भी जब कोई प्रॉब्लम आए तो थोड़ा बियॉन्ड जब आप उससे जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस से दूर जाते हैं, जिसको बड़ी सरलता से दीदी ने बताया कि निर्माण चित एटीट्यूड, वो जो आपका होता है ट्रस्टीशिप जो होती है उससे आपके कर्म में कुशलता आती है। तो दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी एक बार फिर से जोरदार करतल ध्वनि से दीदी का धन्यवाद करते हैं। अभी हम सबके बीच में हैं आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी वीना दीदी। आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं एडमिनिस्ट्रेटर विंग की कर्नाटका के, और आप सिरसी सेंटर इंचार्ज हैं। आप भगवद गीता की विदुषी भी हैं। तो आज एक सुंदर जो श्लोक को लेकर के हमने ये वर्कशॉप रखा है, योगः कर्मेषु कौशलम्, तो आज आप इस पे प्रकाश डालेंगे कैसे योग के द्वारा कर्म में कुशलता आती है। आदरणीय वीना दीदी।
ओम शांति। दुनिया के सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर योगेश्वर परमात्मा को याद करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विंग के चेयरपर्सन आदरणीय आशा दीदी जी और मंचासीन सभी गणमान्य और सभी भाइयों और बहनों, आज का जो विषय है योगः कर्मसु कौशलम्, ये पूरा श्लोक है, बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, सुकृत हो या दुष्कृत, सब में बुद्धि को न फंसाते हुए योग को, योग के माध्यम से कर्म को सुकरम बनाने की जो कुशलता है वही योग है। कर्म कुशलता से कर्म सुकर्म बन जाए। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ आपके सामने रखना चाहूंगी। हम दूध रोज इस्तेमाल करते हैं, दूध जीवन का एक अंग है। एक बार दूध को गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? दूध सोच रहा था कि सवेरे से लेकर शाम तक मेरा उपयोग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, चाय कॉफी बनाते हैं, कोई उसको खीर में डालता है तो कोई उससे प्रसाद बनाता है, बहुत तरीके से मेरे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रात होते ही मेरे वो अंदर थोड़ा सा दही डाल देते, खटाई डाल देते हैं, जो मुझे खराब कर देते हैं। इससे परेशान होकर दूध ने परमात्मा के सामने अपने परेशानी कंप्लेंट रखा, तो परमात्मा ने दूध को बहुत अच्छी तरह से समझाया, देखो दूध के स्वरूप में तुम कितने घंटे रह सकते हो, 12, 24, ज्यादा से ज्यादा फ्रिज में रखो तो एक दो दिन ज्यादा, लेकिन जब दूध से दही बन जाओगे तो 3 दिन 4 दिन आराम से रह सकोगे। फिर दही का मथन जब होगा जिससे माखन निकलेगा, वो माखन 8-10 दिन रह सकता है। फिर माखन को घी में परिवर्तन करो तो घी को 6 महीने तक भी अच्छी तरह से हम रख सकते हैं। और दूध का कीमत क्या है? ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया एक लीटर का, 1 किलो का। लेकिन घी का क्या है? 1000 रुपया। भले तुम्हारे अंदर खटाई डाली गई, तुम्हें तोड़ा गया, तुम्हारे स्वरूप को बदला गया, लेकिन टूटते हुए भी तुम्हारा जो स्वरूप चेंज होता गया उसमें तुम्हारी कीमत बढ़ती गई, और कीमत बढ़ती गई और कीमत के कारण तुम्हारी आयु, लाइफ स्पैन भी बड़ा होता गया। इसलिए इससे दुखी नहीं होना है। जो अगर कर्म कुछ खराब भी हो जाता है, तुझे तोड़ा भी जाता है तो कोई हर्जा नहीं, उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढते जाओ तो जीवन सफल हो जाएगा। एक जपनीस आर्ट है, किंगसुदे कहते हैं, टूटे हुए पॉट्स को गोल्ड पाउडर से जोड़ते हैं, और जब टूटे हुए एक पॉट को गोल्ड पाउडर से जोड़ते हैं तो बहुत अच्छा नवीन आर्ट बन जाता है, बहुत स्ट्रांग भी हो जाता है, साथ ही साथ बहुत सुंदर भी दिखता है, वैल्यू भी बढ़ जाता है उसका। इसी बात को हमारे सनातन संस्कृति में, भारत के प्राचीन एडमिनिस्ट्रेशन में जो सुव्यवस्थित था, है ना, भारत का जो प्राचीन एडमिनिस्ट्रेशन है ये सुव्यवस्थित था, क्योंकि इस एडमिनिस्ट्रेशन में सबकी अवस्थाएं बहुत अच्छी होती थी। जहां अवस्थाएं अच्छी है वहां व्यवस्थाएं ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ठीक करने के लिए खुद को तो ठीक करना पड़ेगा। इसी बात को दर्शाते हुए गीता में ये जो श्लोक है, योगः कर्मसु कौशलम। अच्छा कर्म है तो मैं अच्छा करूंगा, अच्छे साथी मिलेंगे तो मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, अच्छा माहौल होगा तो मैं ये अचीव करूंगा। ये तो हर कोई कर सकता है, क्या बड़ी बात है इसमें। लेकिन योग वो चीज है, आपको विपरीत परिस्थिति में, एंटी एटमॉस्फेयर में भी अच्छा काम करने की शक्ति, प्रेरणा और अंदरूनी ताकत प्रदान करता है। इसी को सुकर्म कहते हैं। नॉर्मली सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, उसमें मेरा कर्म सुकर्म हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां नेगेटिविटी भी है, अपोजिशन है, वहां भी अगर आप पॉजिटिवली अपने कर्म को सुकर्म बना सकते हैं, दैट्स योर पावर, दैट इज योगा। उसी को योगा कहते हैं। यह है गीता में परमात्मा ने बहुत सुंदर अर्थ बताते हुए, ये जो डेफिनेशन हम गीता से पाते हैं, योगा, योग का अर्थ दीदी ने बताया, युज शब्द से निकला है, जोड़ना है ना, कम्युनियन, जोड़ना है योग का अर्थ। दीदी ने बहुत खूब बताया कि योग को आप मेडिटेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। मेडिटेशन का अर्थ होता है टू हील, योग का अर्थ होता है टू कनेक्ट। आपको कुछ लगा है, दर्द हुआ है, उसको ठीक करना वो मेडिटेशन है, लेकिन अपने अंदर की ताकत को जगाना, इसके लिए खुद को सुप्रीम पावर से जोड़ना, खुद को खुद से जोड़ना, खुद की अच्छाइयों से जोड़ना, खुद के अपने ओरिजिनल नेचर से जोड़ना, सबके साथ जुड़ के काम करना, सबके साथ जुड़ के काम करते हुए पॉजिटिविटी को बनाए रखना, ये योग है। इसलिए कई संस्कृत शब्दों के आप इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। इसी तरह योग अपने आप में योग है, इसको आप मेडिटेशन में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, लेकिन कोई शब्द नहीं मिल रहा है तो हम उसी का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, वो भी गलत नहीं है। जैसे कल भी हमने सुना था, मेडिटेशन का बहुत सुंदर अर्थ है, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज मेडिटेशन, ऑल अटेंशन ऑन सेल्फ। हम दूसरों पर ज्यादा, इनके कारण मेरा ऑफिस अटका हुआ है, इनके कारण मेरे काम रुके हुए है, अगर मैं इसको कैसे ठीक करूं, ऐसे सोचते जाऊं तो कैसी भी परिस्थिति में मैं रास्ता निकाल सकती हूं। यह है बहुत सुंदर योग का डेफिनेशन। इसलिए सुकर्म को सुकर्म कैसे बनाया जाए, बहुत अच्छी तरह से दीदी ने बहुत गहराई से हमें समझाया। जब हम इगोइस्टिक होकर कर्म करते हैं तो हमारा कर्म कुकर्म बन जाता है, विकर्म बन जाता है, नेगेटिव एक्टिविटीज हो जाते हैं, अहंकार में लिया हुआ डिसीशन, गुस्से में लिया हुआ डिसीशन, हड़बड़ी में लिया हुआ डिसीशन हर बार सही हो ये हम कह नहीं सकते। अगर थोड़े से शांत होके, मन को थोड़ा सा शांत करके, साइलेंस में लेके जाके, बाद में अगर हम एक्शन में आते हैं, इसलिए कहते हैं योगा हमें क्या सिखाती है, योगा हमें रिएक्ट करना नहीं सिखाती है, डोंट रिएक्ट, एक्ट यूर सेल्फ। अपना क्या नेचर है, सामने वाला आपको डांट रहा है, आप भी डांट रहे हो, क्या फायदा, वो डांट रहा है डांटने दो ना। आप देखिए रास्ते में हम चलते हैं, वॉकिंग निकलते हैं ना सवेरे सवेरे, मोहल्ले के सारे कुत्ते हमारे पीछे पड़ते हैं, भौंकते हैं। जब कुत्ता भौंकता है तो क्या पीछे मुड़ के हम भी भौंकते हैं क्या, तुम भौंक रहा है तो मैं क्या कम हूं क्या, मैं भी भौंक सकता हूं, नहीं नहीं हम नहीं करते। हम एक पत्थर उठाते या एक डंडा उठाते, जैसे मुड़ के डंडा दिखाते बेचारा कुत्ता दुम मोड़ के चला जाता है। ये है डोंट रिएक्ट। कुत्ते जैसे हमें रिएक्ट नहीं करना है, कोई सामने वाला कुछ भी करे, लेकिन अगर मैं योग की स्थिति में हूं, मेरी अवस्था ठीक है, तो मैं अपने स्वभाव के अनुसार रिएक्ट करूं, अपनी सीट के अनुसार रिएक्ट करूं, अपनी जिम्मेवारी के अनुसार रिएक्ट करूं। इसके लिए ताकत को, साइलेंस पावर को जमा करना होगा हमें। दो मिनट कर लिया नहीं, रोज रोज करते हुए। लोग क्या कहते हैं, जब हम ब्रह्मा कुमारी संस्था में योग सीखने के लिए लोगों को बुलाते हैं तो लोग कहते हैं, दीदी जब बीमार होते हैं तभी तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी नहीं है तो डॉक्टर से बातचीत करने तो कोई जाता नहीं है ना। इसी तरह जब हमें परेशानी होगी तब हम आपके पास आएंगे, परेशानी नहीं है तो क्यों आए आपके पास। मैं उनको कहती हूं, योगा या मेडिटेशन इज नॉट मेडिसिन, ये मेडिसिन नहीं है, ये खाना है। योग जो है ये खाना है, हर व्यक्ति को रोज खाना पड़ता है, बीमार होंगे तब खाएंगे नहीं सोचेगा, रोज हमें खाना है। और रोज जो हम खाना खाते हैं न्यूट्रिशन बैलेंस रखते हैं तो बीमारी आने पर वो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन डाइट हमें हेल्प करता है। इसी को गीता कहती है, बुद्धि युक्तो जहाति हा उभे सुकृत दुष्कृत तस्मात योगा युज्य स्व योग कर्म सुकौशलम। आगे चलकर गीता ये कहती है योग समत्व योग उच्यते। योग क्या है? कीपिंग द बैलेंस इज योगा, कीपिंग द बैलेंस। बाहर से हम बहुत हर एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को ठीक ठाक रखता है, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें होती है, आपको ऐसे खड़ा होना है, ऐसी बातें करनी है, आपको चेहरे पे ऐसे दिखाना है, बाहर ही तो सब कुछ सिखा दिया लेकिन अंदर की स्थिति कैसे हो बात करते समय हमारी, ये किसी ने नहीं सिखाया। इसलिए ये बैलेंस होना, बाहर की पर्सनालिटी भी जरूरी है लेकिन अंदर की पर्सनालिटी अगर ठीक नहीं है, बाहर ही हम सुधारते गए आज प्रॉब्लम यही हो गया, बाहर हम सुधरते गए। आप देखो, आप कौन सी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस देखो, फाइव स्टार होटल से कोई कम नहीं लगता, इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बनते जा रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, ऑफिस बहुत सुधरते जा रहे हैं। ऑफिस में बैठने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स को बहुत अच्छे अच्छे हाई एंडेड कार्स मिल रहे हैं, बाहर के सुधार हो रहा है लेकिन क्या अंदर के सुधार हो रहा है? अंदर से बैलेंस्ड लाइफ हम जी रहे हैं, ये हमें इंपॉर्टेंस देना है। इस पर मैं नहीं कहती हूं कि सब नहीं दे रहे हैं, 0.1%, 2%, 5% तक लोग दे रहे हैं लेकिन ज्यादा नहीं दे रहे हैं। इसलिए योग का मतलब है कि हम बाहर से जितना कर्म अच्छा करते जा रहे हैं उतने अंदर से भी हमारी सोच अच्छा हो। हम मुस्कुराकर बात कर रहे हैं, अंदर सोच रहे हैं घर जाने का समय तो आगे आके टपक गया, क्या करें, बात करना ही पड़ेगा। ऐसे सोचते हुए अगर आप बात करेंगे, कितनी भी मीठी चाशनी जैसे बात करो तो उसका असर हो नहीं सकता। इसलिए बैलेंस्ड ये योग है। इसी योग से हमारा कर्म सुकर्म बनता है। इसी मेडिटेशन, इसी राजयोग की बातें ब्रह्मा कुमारी संस्था में हमें सिखाते हैं। हमारी जो भी हमारी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हमारी संस्था के, ब्रह्मा बाबा से लेके आज के हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी है, उनसे हम इन्हीं बातों को सीखते। दीदी हमारे से छुट्टी ले रही है, आप सभी दीदी को एक बार एक हाथ के हाथ ताली से छुट्टी लीजिए। इसलिए मैं इस विषय के ऊपर प्रकाश डालते हुए यही स्पष्ट करना चाहूंगी कि हम यहां जितने भी आए हैं, हम जाके एक संकल्प करें, योग कर्म सुकौशलम, हमारा कर्म सुकर्म हो। तो पहला कदम हम क्या कर सकते हैं, हम जो यहां पर अपने अंदर के कर्म को सुकर्म बनाने की प्रेरणा लेके जा रहे हैं, इस प्रेरणा को कम से कम 10 लोगों तक तो हम पहुंचाए। ये हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम बदल नहीं सकते लेकिन इंस्पायर तो कर सकते हैं। हम उनको ये बातें बता सकते हैं। हम ऐसे एक कॉन्फ्रेंस में गए थे जहां पर ऐसी एक इंस्पिरेशन मिली, ऐसी एक मोटिवेशन मिली जो हमारी पूरे सिस्टम को सुधार सकता है। मैं सदैव याद रखती हूं, गीता के आधार से चाणक्य ने 5 बातें बताई है बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। चाणक्य कहते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बेस्ट बनाना है तो पहला चाहिए आपको समदर्शित्व। समदर्शित्व जैसे दो आंखें हैं हमारी, समत्व है तभी तो एक ही चीज को दो आंखें देखते हुए एक ही कैप्चर हो सकता है। नहीं तो आपको पता है ना, 3 कैमरे से शूटिंग होती है तो एडिट करने में कितना मुश्किल लगता है एक बनाने में। लेकिन हमारी दो दो कैमरे होते हुए एक ही पिक्चर को एक ही तरीके से हम देख पा रहे हैं, समदर्शित्व। दूसरा है गीता के आधार से चाणक्य ने बताया, समदर्शी बनने के लिए सत्यदर्शी होना बहुत जरूरी है। सो सी द ट्रूथ एज इट इज, सत्य जैसा है वैसे ही जान लीजिए। मैं एक सत्य हूं, आप एक सत्य है, परमोच्च सत्ता परमात्मा सत्य है, नेचर सत्य है, दुनिया सत्य है, वैल्यू सत्य है, वैल्यूस आर इटर्नल। ये सत्य दर्शन कीजिए। अगर समदर्शी बनना है तो सत्यदर्शी के साथ आपको दूरदर्शी बनना होगा। आप सोचेंगे आज मैं पेड़ लगाऊंगा, मुझे तो छाया नहीं मिल रही है, मैं क्यों पेड़ लगाऊं? तो आगे के जनरेशन के लिए हम खाली जमीन छोड़ के बंजर जमीन छोड़ के जाएंगे, दूरदर्शित्व का होना, मैं पेड़ लगाऊंगा तो नेक्स्ट जनरेशन तो उसे छाया पाएगा। दूरदर्शित्व, दूरदर्शित्व के साथ साथ हमें पारदर्शित्व का होना बहुत जरूरी है, केवल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, हर घर में, हर संबंध में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ अगर एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाना, लाइफ को बेटर बनाना है, तो पांचवा इंपॉर्टेंट है प्रियदर्शित्व। हम कहते हैं मैं ना सच बोलता हूं, किसी से डरता नहीं हूं, किसी के मुंह पर भी मैं बोल सकता हूं, क्या फायदा? संबंध बिगड़ जाएंगे, माहौल बिगड़ जाएगा, लोग आपसे दूर भागेंगे, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर सकेंगे? इसलिए अगर आपको कठिनाई से बोलना भी है, थोड़ा सा चाशनी लगा के प्रियदर्शित्व से बोलना। इसके लिए हमारी संस्कृति कहती है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात सत्यम अप्रियम न ब्रूयात। सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो, अप्रिय सत्य नहीं बोलो। सत्य को बोलना है तो प्रिय बनाकर बोलो। ये पांच बातें समत्व की, सुकर्म करने की प्रेरणा देने के लिए भगवान ने हमारे लिए बताई है। मैं समझती हूं अगर ये पांच बातों को रिलेट कर पाए हम, अगर हम इसको जीवन में उतारने के लिए कहां एक से तो शुरू करें, पहले मीठी वाणी से शुरू करें, है ना, प्यार से बोले। अगर आपको डांटना भी है थोड़ा प्यार से डांटिए ना, लोग नाराज नहीं होंगे। अगर अच्छी बातें भी आप अगर गरज के बोलेंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे। सब कुछ जबान पर है, इसलिए कहते 6 फुट के आदमी को पूरी तरह से 3 इंच का जीभ कंट्रोल करता है। इसलिए इन्हीं बातों के साथ हमें कर्म तो करना ही है, कर्म से भागना नहीं है, कर्म से ही कर्म को काटना है, कर्म से ही कर्म को श्रेष्ठ बनाना है। इसलिए योग के माध्यम से हम अपने कर्म को सुकर्म बनाएं। इसके लिए योग को कर्म योग में परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सभी यहां से कर्मयोगी बनने की प्रेरणा लेके जाएंगे और अपने कर्म क्षेत्र पहले अपने घर से ही शुरुआत करेंगे। घर भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो होम मिनिस्ट्री है। अगर वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला अपने घर को कंट्रोल नहीं कर पाता, ये आप सभी को पता है। इसलिए हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन योगः कर्मसु कौशलम को घर से शुरू करें तो अपने आप ऑफिस भी सुधर जाएगा। एक ऑफिस सुधरेगा, एक को देख के 10 सुधरेंगे तो दुनिया को बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। इसी आशा के साथ आप सभी यहां से एक संकल्प लेके जाइए कि मैं इस मेडिटेशन को 10 लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा तो हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद वीना दीदी। बहुत सुंदर रीति से आपने भगवत गीता पे बेस करके और भगवत गीता से चाणक्य ने किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर्स को एडमिनिस्ट्रेशन करना सिखाया है, बहुत अच्छी तरह से आपने सुनाया। सबने उसका बहुत आनंद भी लिया है ना, कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया, छोटे छोटे एग्जाम्पल। जब हम सफर करते हैं, दूध ने अपनी कहानी सुनाई कि ये सब क्या है, मुझे क्यों खट्टा बना दिया गया, फिर क्यों इतना मथा गया, जब खट्टा हुआ तो दही उसमें मेरा वैल्यू भी बढ़ जाता है और मेरी लाइफ क्या कहें लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है, और फिर उसका जब मक्खन बनता है तो और बिलोए जाने के बाद वो और कॉस्टली बनता है और लाइफ लॉन्ग हो जाता है उसका, और जब उसको गर्म करके उबाला जाता है अग्नि में तो वो और भी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है और उसकी लाइफ स्पैन जो है बढ़ जाती है। तो उस प्रकार जब चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, बातें आती हैं, परिस्थितियां कितनी नेगेटिव हो, अगर मुझे उसे ठीक से हैंडल करना आता है तो वो एक्चुअली मेरी पर्सनालिटी को बढ़ाता है। और बहुत सुंदर बातें आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार करतल ध्वनि से हम आपका धन्यवाद करते हैं। 3 शब्द हैं योग में, इस टॉपिक में, योग, कर्म और कुशलता। योग वास्तव में क्या है? अंतिम अध्याय अष्टादश अध्याय में परमात्मा ने, भगवान ने बहुत सुंदर भगवत गीता में समझाया है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। योग क्या है? मोह नष्ट करना और स्मृति लेके आना। यहाँ पे भी शिव बाबा हमको कहते, बच्चे योग शब्द बहुत भारी है, योग मत कहो, क्या कहो? याद। या आत्माना स्मृति। जब आप स्मृति लब्धा हैं, आपकी स्मृति ठीक है, मेमोरी अच्छी है, तो आप देखना आपके कर्तव्य अच्छे होंगे, ठीक है ना। और कर्म के लिए क्या कहा गया है, कर्म कैसा, कर्म फिलॉसफी में परमात्मा ने हमें एक बहुत सुंदर डेप्थ दिया है। लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो, लेकिन खाली कर्म इम्पोर्टेंट नहीं है, कर्म का फल बनता है। कर्म इज इम्पोर्टेंट, नो डाउट, बट योर इंटेंशन बिहाइंड योर कर्म इज मोर इम्पोर्टेंट। जो कर्म आप कर रहे हैं, उस कर्म के पीछे आपकी वृत्ति क्या है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल ब्रह्मा कुमारी में दिया जाता है, दो व्यक्ति चाकू पकड़ के बैठे हैं, दोनों ही किसी के पेट को काट रहे हैं, ठीक है ना। एक जो है मर्डरर है, जो किल करने के लिए, मार देने के लिए चाकू का इस्तेमाल करता है। दूसरा डॉक्टर भी चाकू लेके बैठा है, वो भी पेट को काटता है। दोनों के कर्म एक जैसे होते हुए भी उनकी प्राप्ति दोनों की अलग अलग है, क्योंकि दोनों की वृत्ति अलग है, एक मारना चाहता है, एक बचाना चाहता है। तो कर्म चाहिए और कुशलता। कुशलता क्या है, बहुत सुंदर, ये जो पांचों पॉइंट बताए चाणक्य के, बहुत सुंदर पॉइंट्स है। आप उस पे जाकर के सोचना कि जब मैं कोई कर्म करता हूं, अगर ये पांचों क्राइटेरिया अच्छे से पास कर पाता हूं, तो देखना वो मेरा कर्म जो है वो कुशल कर्म है। बाकी टेम्पररी डिसीजन लेना किसी को खुश करने के लिए, या अपने आप को अपने लालच की वृत्ति के अनुसार से डिसीजन लेना, अपने स्वार्थ की वृत्ति से डिसीजन लेना, वो आपके कर्म को कभी कुशल नहीं बना पाएगा। तो बहुत सुंदर आज का ये टॉपिक है, योग कर्मेशु कौशलम। और हमारे बीच में अभी हमारे भ्राता प्रशांत गोयल जी बैठे हैं, जो IAS हैं, दिल्ली के फाइनेंस कमिश्नर हैं, और हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आज के इस टॉपिक पे आप भी प्रकाश डालें। भ्राता प्रशांत गोयल जी।
ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय सिस्टर वीना, सिस्टर बिंदु, सिस्टर लीना, ब्रदर हरीश, ब्रदर डॉक्टर नाथमल, डॉक्टर ललित वर्मा, बीके सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, कलीग्स एंड फ्रेंड्स फ्रॉम नेपाल, टुडे इन दिस वर्ल्ड व्हेन द चैलेंजेस आर राइजिंग, हमारे लिए हर दिन एक नई मुश्किल सामने आ रही है, नया चैलेंज सामने आ रहा है। दुनिया, भारत में ही नहीं, दुनिया भर की पॉलिटिक्स पोलराइज्ड होती जा रही है, डिविजिव फोर्सेस डेवलप होते जा रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर अपने एक ना एक नया डिजास्टर क्रिएट होता है हर और हर साल होता है। हम अपने भारत देश में ही देख लें, दुनिया भर में जहां तहां हमने सोचा नहीं था वहां लड़ाइयां हो रही हैं, और सरकारें वित्त घाटे से घिरती जा रही हैं, डेट जो ऋण है सरकार पे बढ़ता जा रहा है। इस सब के पीछे ये जो टॉपिक है आज का, बहुत ही रेलेवेंट है, मेडिटेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स। इस समय जो योगा कौशलम, कर्मासु कौशलम, एक्सीलेंस इन एक्शन, इस समय अगर हम डिलीवर कर सकें तो ये सोसाइटी के लिए तो मतलब बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब मैंने अपने IAS की सर्विस में जब 3 डिकेड से ज्यादा मेरे को सर्विस करते हुए हो गया, और मेरा लगभग हर दिन मेडिटेशन से शुरू होता है, तो मैं शायद इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूँ, कुछ आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। हमारे ब्यूरोक्रेसी जो है, वो हमेशा से एक्सपेक्टेड था कि एक साइलेंट वर्कर की तरह काम करेगी, पर जैसे हमें आशा दीदी ने बोला था इनॉग्रेशन सेशन के दौरान, हम लोग अपना ईगो अपने शोल्डर्स पे लेके चलते हैं। उसके बारे में कल कुछ सिस्टर वीना ने भी कई हिंट्स दिए थे, और अगर मैं थोड़ा और खुल के बोलूं, आज की डेट में हम लोग वी यूज मोर थ्रोट पावर देन वर्क, बोलते ज्यादा हैं काम कम करते हैं, इधर से उधर फाइलें पुश करते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। यहां पे हमें ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स बहुत कुछ सिखा सकती हैं, कैसे वो एक साइलेंट वर्कर की तरह टायरलेसली काम करती रहती हैं विद स्माइल। कभी उनका नाम भी शायद हम लोग कितने लोग जानते हैं कि किस किस सिस्टर या किस किस ब्रह्मा कुमारी ब्रदर ने इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेस बनाने के लिए काम करा है, शायद हमें कभी पता भी नहीं चलेगा। और अगर हम क्या सोचते हैं कि अगर वो ये साइलेंट वर्क नहीं होता तो क्या आज की डेट में ब्रह्मा कुमारी संस्थान वहां होती जहां है? आप सोचिए अपने आप कि इस तरह के जो डेडिकेशन के बिना क्या वो संभव है, और हम में से कितने लोग उस तरह का डेडिकेशन क्रिएट कर पाते हैं अपनी वर्क प्लेस पे। मेडिटेशन, मैं सुबह जल्दी उठ करके, सुबह मैं 3 बजे उठता हूँ, और 3 बजे उठ करके मेरा दिन शुरू होता है YouTube वीडियो से। YouTube वीडियो को आप गलत मत समझिएगा, YouTube वीडियो ओनली फॉर ब्रह्मा कुमारी के जो प्रवचन के हिसाब से। मेरा दिन YouTube वीडियो से शुरू होता है, YouTube वीडियो पे ही खत्म होता है, और सिर्फ उसमें। अगर अब मेरे YouTube को इतनी आदत हो गई है कि ब्रह्मा कुमारी वीडियोस के अलावा कुछ दिखाता ही नहीं है, नहीं एडवर्टाइजमेंट, मैंने उसको पेड ऐप कर लिया तो वो एडवर्टाइजमेंट खत्म हो गए। नहीं तो वो एड, बिल्कुल सही बोला, नहीं तो एड आपको बहुत तंग करते हैं, बीच बीच में आप कुछ सुन रहे हैं सीरियस बात और सडनली एक एड आ जाएगा, तो थोड़े से पैसे लगते हैं। तो मेरे मोबाइल पे सिर्फ एक YouTube ही पेड वीडियो है। सिस्टर अच्छा, अभी अभी बीके आशा दीदी ने हमारे को बोला, सिस्टर आशा दीदी ने बोला हमें कि योगा जो कि एक फिजिकल एक्सरसाइज है वो मेडिटेशन नहीं है। योगा हेल्प्स इन डूइंग मेडिटेशन बट योगा इज नॉट मेडिटेशन। मैं खुद योगा करता हूं, योगा करने के बाद मेडिटेशन करता हूं, योगा से जो एनर्जी जनरेट होती है उससे मेरा मेडिटेशन में कंसंट्रेशन कहीं बेटर होता है। और रात को अगर मैं देर से उठ सो रहा हूं तो भी मैं सुबह उठ के वही 3 बजे लगभग उठ करके अपना जो रूटीन है योगा फॉलोड बाय मेडिटेशन, ये जारी रहता है मेरा। ये तो मुझे अभी कल ही बताया सिस्टर वीना ने कि 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन इक्वल टू 4 आवर्स ऑफ स्लीप, तो ये फॉर्मूला तो अब मेरे को पता लगा, तो शायद इसी कारण मैं उसको सस्टेन कर पाता हूं। हमें मोहिनी दीदी ने कल क्या बोला था शाम को कि डू नॉट, हम मेडिटेशन करते हैं तो एक गलती ये करते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ कुछ संकल्प उठते हैं और हर तरह के, उस समय हमें बड़ा खराब लगता है, कहां मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, कहां इस तरह का जो मेरे अंदर में ये विचार उठा। बट कल उन्होंने क्या बोला उसको हम, अगर ध्यान हो आपको, कि हम उस संकल्प को फाइट ना करें, हम उसको सुमन विचारों से रिप्लेस कर दें। और सुमन विचार जो मैंने अपने लिए रखे हैं, जो 7 जो हमारे सोल के संस्कार हैं, प्लस हमारे बीच में आप लोग ने अब तक, आपका हर कोई जानता होगा बीके विद्यार्थी दीदी, उनके जो पॉजिटिविटी ग्रुप पे जो मैसेजेस आते हैं वो डेली एक मैसेज भेजती हैं, दे आर रियली आउट ऑफ वर्ल्ड. बहुत आपको कई बार दे हिट यू लाइक एनीथिंग. छोटा सा एक मैसेज होता है, शायद कई सारी मूल्यों का मिला करके वो एक मैसेज बनता है. और उस मैसेज को करके पढ़ के और योगा करना, वो मेडिटेशन करना, वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है. मैं सिस्टर विधात्री को कई बार वो बिजी होती हैं, मैसेज नहीं भेज पाती, तो मैं उनको फोन करके बोलता हूँ, सिस्टर आपका मैसेज नहीं आ रहा, हमारे लिए टाइम निकालिए, इट इज लाइक ए मेडिटेशन पिल फॉर मी. सो अगर आप लोग उस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो सिस्टर विधात्री से रिक्वेस्ट करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं. यू विल रियली एंजॉय इट. अच्छा, मैं आपको YouTube के बारे में बता रहा था, उसके ऊपर आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, जो ब्रह्मा कुमार इसके बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे. और एक उसमें आपको मुरली के डेली मुरली का वो भी मिल जाता है सारांश, अगर आप, और उसके अंदर सारे मुरली के मेन पॉइंट्स आते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आते हैं. आज की डेट में एक नया वो शुरू हुआ है, मुरली अव्यक्त मुरली चिट चैट. मेरे ख्याल से जिस तरह से वो डिलीवर हो रहा है, मुझे लगता है वो AI ड्रिवन है. और उसमें आपको 15 से 20 मिनट का वो होता है एक वीडियो, और उसके अंदर बहुत सिंपल लैंग्वेज में डेली की मुरली आती है. आपको सरल शब्दों में, हो सकता है जो नए भाई बहन हो उनको वो समझ ना आए, अगर हम मुरली के शब्द, अगर उन्होंने पहले कोर्स नहीं करा, बट अगर आप वो सुनेंगे तो आपको पूरा सारा बहुत सिंपल शब्दों में वो समझा देता है आपको कि किस तरह से आपको अपना जो आज की मुरली में क्या मेन पॉइंट्स थे. मैं आपको मतलब ऐसा नहीं, मैं ये सब करते हुए कोई गलती नहीं करता, गलतियां मेरे से अभी भी होती हैं. मैं अपने को आई कॉल माई सेल्फ वर्क इन प्रोग्रेस, और मैं कोशिश करता हूं कि श्रीमत की राह पे चलूं. श्रीमत जो है हमने सीखा है ब्रह्मा कुमारी से, उसको मैं अपने जीवन में अपनाऊं, और छोटे छोटी चीजों को भी मैं अपने कोशिश करता हूं कि मैं उनको अडॉप्ट कर सकूं. गलतियां होती हैं, बट फिर मैं अपनी कोशिश दोबारा जारी रखता हूं. आप मेडिटेशन करने का, हमें उषा दीदी ने कल कितना सुबह जो मेडिटेशन कराया था हमें, उन्होंने 3 चीजें बताई थी. अपनी बैटरी को अगर हमें चार्ज करना है, बी पॉजिटिव. अगर आप मेडिटेशन करेंगे अपने आप में पॉजिटिविटी जनरेट हो जाएगी. और उन्होंने तीसरी चीज पे स्ट्रेस करा था वो ये थी कि हम सर्विस करें लोगों की, सेवा. तो हमें बाय प्रोफेशन हमें वो मिला है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कि हम जितनी भी चाहे सेवा कर सकते हैं. ये हमारा उस पे है, हमारे हम उस अपने पद को किस तरह से यूज करके कितने लोगों की मदद करना चाहते हैं. तो हमारे को बैटरी चार्ज करने में बहुत मतलब हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है अगर हम कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रख सकें. तो मेडिटेशन करने के फायदे, डेफिनेट क्लैरिटी इन माइंड. आप क्विक, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, डिसीजन लेने में आसानी होती है, मुश्किल डिसीजंस भी लिए जाते हैं. उस मुश्किल डिसीजंस में कई बार आपको दिक्कतें आ सकती हैं, बट शायद समय की जरूरत यह है कि वो मुश्किल डिसीजन भी कोई ले. उसके बाद जो कहते हैं हम आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज, क्रिएटिविटी. सडनली ऐसे आइडियाज भी आते हैं. कोई उस समय मेडिटेशन के टाइम में मैं कुछ सोच नहीं रहा होता हूँ उसके बारे में. कभी था वो एक चैलेंज चल रहा है जॉब के टाइम में, सडनली मुरली के टाइम में वो फ्लैश करता है फ्रॉम नोवेयर. कि ये भी सोल्यूशन हो सकता है, और वो उसके बाद में आपको आपने अच्छा कई बार ये आता है, आपने ये एस्पेक्ट भी एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो आपको चेक करना चाहिए। सो बहुत फायदे हैं मुरली करने के आप। और मैं एक चीज और कह सकता हूं, अब चूंकि यहां पे मेरे को बोलने का मौका दिया है तो मैं थोड़ी इमोडेस्टी से कह सकता हूं, जो एक बात हम उठी कि इट ऑल्सो क्रिएट्स हम्बलनेस, इट ऑल्सो इट मेक्स मी मोर एनर्जेटिक। मेरे यंगर सबॉर्डिनेट्स मेरे से पूछते हैं कि आप सर कैसे इतने एनर्जेटिक रहते हैं, शाम के टाइम भी आप ऑफिस से जाते हैं तो भी आप में उतनी एनर्जी है, हम तो थक जाते हैं। सो दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम नो स्पेशल एफर्ट्स फॉर इट, बट शायद वो योगा और वो मेडिटेशन मुझे इतना वो हेल्प कर रहा है कि मैं इन सब चीजों को कर पा रहा हूं। वीना दीदी ने एक बात और बोली थी, गॉड कीप्स टेस्टिंग विथ वन प्रॉब्लम और अनादर। सो मैंने अपने अपनी जॉब पे अपने घर पे मेरे कई चैलेंजेस हैं जिसको मैंने डील करा है, और आई डोंट नो कि अगर वो मेरे पास ये मेडिटेशन का वेपन नहीं होता तो मेरा क्या होता, आई कुड हैव कोलैप्स्ड, बट इसी मेडिटेशन के कारण मैंने अपने सैनिटी को बरकरार रखा है। सो आज की डेट में मतलब घर की बात अगर करें तो मैं मेडिटेशन करने के बाद में अब मेरे फैमिली में मेरे से कोई बोलता है, कोई ऐसी बात होती है जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है तो भी मैं काम रह सकता हूं। मुझे नहीं मतलब, और ये ऐसे संभव बिल्कुल नहीं था, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था जब मैंने ये मेडिटेशन शुरू करने से पहले। और आज की डेट में अगर मैं ऑनेस्टली कह सकूं, जो सर्विस में हमें बहुत एडवर्सरीज मिलते हैं, मैं अपने एडवर्सरीज के प्रति भी जिन्होंने वाकई मतलब मैं ऐसा काम करा, एक डिफरेंस ऑफ व्यू तो अलग बात है, जिन्होंने मेरे को हार्म करने का कोशिश करा, जिन्होंने मुझे मेरे साथ गलत करने का कोशिश करा, मैं उनके लिए भी शुभ भावना और शुभकामनाएं क्रिएट कर पाता हूं। मुझे नहीं पता उनको कितना फायदा हुआ, पर डेफिनेटली मुझे इतना मालूम है मैं मोर पीसफुल हूं। और आज की डेट में पहले मैं घर पे बॉस बनता था, आज की डेट में मैं अपने को बॉस डिक्लेयर करना बंद कर दिया। मैं आज की डेट में शिव बाबा को अपना बॉस माना हुआ है कि उनका परिवार है वो देखेगा। अब मैं यहां से इस कॉन्फ्रेंस से क्या लेके जा रहा हूं, चैलेंज टू ट्रांसफॉर्म माय रोल इनटू अ मोर इंस्पिरेशनल लीडरशिप, जैसा सिस्टर विधात्री ने बोला, और लव बिफोर लॉ, आज हमने सुना उसके बारे में, क्या मैं वो क्रिएट कर सकता हूं, ये मेरे लिए चैलेंज होगा जो मैं अब अपने वर्क प्लेस पे टेस्ट करने का कोशिश करूंगा। और घर के लिए तो आज ब्रदर भारत भूषण ने हमें वो बोला कि जाके मुझे अपनी वाइफ से बोलना है कि तुम बहुत अच्छी हो। मुझे याद नहीं कि मैंने ये लास्ट कब बोला था और अब मैं कैसे बोलूंगा, बट ये एक चैलेंज उन्होंने भी दिया। सो अगर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा सिस्टर शिवानी के शब्दों में, मेडिटेशन इज नॉट ए चॉइस टुडे, इट इज अ नेसेसिटी। प्लीज बिलीव मी, आई एम आर्डेंट फॉलोअर ऑफ मेडिटेशन, ऑलमोस्ट विदाउट फेल आई डू इट डेली फॉर 1 आवर, दिस इज बिसाइड माय योगा एंड इट रियली कीप्स मी मूविंग। और एक लास्ट बात अगर आप कर सकें,
हमारा
अपनी बात को बस एक ही लास्ट सेंटेंस कह के खत्म करना चाहूंगा। अगर मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूंगा, यूट्यूब का वीडियो सिस्टर शिवानी का है, संकल्प से समृद्धि, उसको आप जरूर देखें, अपने जीवन में अपनाने का कोशिश करें। आपकी आप अपना भी जीवन सुधार सकेंगे, सोसाइटी का जीवन भी सुधार सकेंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रशांत गोयल भाई जी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपने मंतव्य रखे, अपने अनुभव रखे। अभी समय भाग रहा है, इसलिए हरीश भाई जी इशारा देके गए हैं कि हमें जल्दी में आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करना है, क्योंकि 9 बजे से फिर कल्चरल प्रोग्राम भी है। तब मैं आदरणीय सीताराम मीना भाई जी से निवेदन करती हूँ कि वो आज के इस टॉपिक पे कुछ बोले। आप IAS हैं, रिटायर्ड IAS, मोदी नगर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं। आप ब्रह्मा कुमारी इसके रेगुलर स्टूडेंट भी हैं, तो मीना भाई जी से निवेदन है। मीना भाई जी,
ओम शांति। जरा प्यार से बोलिएगा, ओम शांति। और ये जो 3 दिन का अनुभव रहा है उसके आधार पर महसूस करते हुए भी बोलिएगा, ओम शांति। धन्यवाद, और धन्यवाद आयोजकों का कि इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस ये हमने इन 3 दिनों में सुना, देखा, महसूस किया, और शायद चुपके से वो अंदर हमारे कुछ धारणा में भी जरूर आया होगा, जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूं। एक बात जो आज का ये टॉपिक है उसको जो अर्थ के रूप में है, वो वास्तव में कर्म तो हमारे बहुत सारे होते हैं, जिसमें हमारे व्यर्थ भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं, लेकिन योगः कर्मेषु कौशलम् का जो टॉपिक है वो सुकर्मों, श्रेष्ठ कर्मों, शुभ कर्मों और कल्याणकारी कर्मों के दृष्टिकोण से है, और वो तभी हो सकता है जब हमारे इंटेंशंस, हमारे इरादे वो नेक हों, श्रेष्ठ हों, शुभ हों और कल्याणकारी हों। साथ ही साथ ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब हम उससे किसी भी तरह से अटैच्ड ना हों, यानी उसमें हम अपना स्वार्थ ना देख रहे हों। और ये चीजें तभी आती हैं जब हम योग का अपने जीवन में शुभारंभ करते हैं, उसको जीवन में अपनाना शुरू करते हैं। इस आत्मा का यह अनुभव है कि हम सबके सब यहां पर जितने हैं या यहां पर जो नहीं भी हैं, वो सब विद्वान बहुत हैं, जानकारियां सबको बहुत हैं, ज्ञान भी बहुत है। हम क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है ये भी सब जानते हैं समझते हैं, लेकिन फिर भी हम या तो गलत कर्म कर लेते हैं या हमारे से हो जाता है, या कभी कभी हम मजबूरी का बहाना लेते हुए कहते हैं कि इस कारण से, कोई ना कोई कारण दर्शाते हुए वो हो गया, यानी बहाना उसमें हम ले लेते हैं। लेकिन अपना अनुभव ये रहा है कि ये सारी चीजें हम तभी दुरुस्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर आत्मिक शक्ति मनोबल होगा, और वो वैसे ही आसानी से प्राप्त नहीं होता, उसमें ज्ञान और योग दोनों चीजों का मिश्रण होना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे यहाँ ब्रह्मा कुमारी का अच्छा लगता है कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मुरली है, ज्ञान मुरली, और ज्ञान मुरली को हमने महसूस किया है कि वो शुभ संकल्पों, श्रेष्ठ संकल्पों, सकारात्मक संकल्पों और ताकतवर संकल्पों, शक्तिशाली संकल्पों का खजाना है। और हमने तो ये भी महसूस किया है कि मान लीजिए कोई विचार हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा रहा है, या बार बार रिपीट करके आ रहा है, या हमें कुछ उस तरह से महसूस हो रहा है कि हमारी अवस्था कुछ ढीली या कमजोर पड़ती जा रही है, तो उस ज्ञान मुरली में इस तरह का जरूर कोई ना कोई बात आती है जो हमारे अंदर को जगाती है, हमारी ताकत को जगाती है, हमारी स्मृति को जगाती है, और हम फिर से उठ खड़े होते हैं या हम फिर से अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं। और हमने यही देखा है, जैसे हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि हनुमान जी को अपनी शक्तियों का पता नहीं होता था, किसी ना किसी को उन्हें याद दिलाना होता था, वो जब याद दिलाते थे तो उसके बाद में असंभव से संभव को वो पूरा कर देते थे। जब सबसे पहले समुद्र लांघने की बात आई तो भी उनको कहा कि तुम्हें ये लांग के जाना है, तो वो तो इतने लंबे चौड़े समुद्र को देख करके उनके अंदर भी संकल्प आया कि ये मैं कैसे पार करूंगा, लेकिन जटायु ने उनको पूरी तरह से अपनी शक्तियों की स्मृति दिलाई और कहा कि तुम एक हुंकार तो भरो, जय श्री राम तो बोलो, कैसे आप जो है पार कर जाएंगे। और उन्होंने प्रभु का स्मरण किया, हुंकार भरी और उड़ने लगे और उड़ करके समुद्र को पार कर गया। हम सब भी उसी तरह के हनुमान हैं, हम सब भी ऐसे ही महावीर हैं, लेकिन हमको अपनी महावीरता का, हमको अपने बजरंगी पने का कुछ स्मरण नहीं रहा है, उसको हम भूल गए हैं। परमात्मा हमें उन्हीं चीजों की याद दिलाते हैं, और जो जैसे हमने, आपने भी पहला पहला पाठ सुना, मैंने भी जब पहला पाठ सुना था, पहला कोर्स की शुरुआत की थी पहले दिन, तो मुझे भी लगा कि ये कितना सरल, कितना स्पष्ट और कितना एकदम से सटीक है। उसी में परमात्मा हमें बताते हैं कि तुम आत्मा हो, अविनाशी अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, और तुम्हारा ये पार्ट भी अविनाशी है, लेकिन उसके साथ साथ तुम आत्मा के अंदर सात अविनाशी गुण भी हैं जो उसमें इनबिल्ट हैं, लेकिन हम उनको भूल गए हैं। और वो सातों गुणों को अगर हम याद करके और फिर परमात्मा की याद करें तो वो एक एक गुण हमारे अंदर धीरे धीरे करके इस तरह से भर जाता है कि हम फिर अपने आप को सक्षम पाते हैं कैसे भी के असंभव काम को करने में, और हमारे अंदर एक साहस आ जाता है, हमारे अंदर जोश आ जाता है, हमारे अंदर उमंग आ जाती है, हमारे अंदर उत्साह भी आ जाता है। कई बार ये भी देखा है कि हम ये समझते हैं कि सामने वाले पर हमारा पता नहीं असर होगा नहीं होगा, लेकिन ये सत्य है कि अगर हमारी अपनी स्थिति मजबूत है, अगर हम अंदर से स्थिर हैं, अगर हमारे अंदर ये भावना है कि हाँ परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा साथी है, तो कैसी भी असंभव से असंभव, विकराल से विकराल, विपरीत परिस्थिति में भी हम अपने आप को स्थिर भी रख सकते हैं, अपने आप को पूरी तरह से उमंग और उत्साह से भरा हुआ भी महसूस कर सकते हैं। मैं बहुत एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, प्रैक्टिकल जो हुआ वो देखा जाए तो उस तरह का उदाहरण भी नहीं है, लेकिन कैसे अपनी स्थिति बनाए रखने से दूसरे पर भी उसका असर होता है नहीं होता पता नहीं, लेकिन कम से कम हम जब स्थिर रहते हैं, हमारी स्थिति जब मजबूत रहती है, तो निश्चित रूप से हमें फिर किसी चीज का भय और चिंता और या किसी भी तरह का ये नहीं लगता कि कुछ मेरे खिलाफ में कार्रवाई भी हो सकती है। हमारे यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी एक होते थे, उनका मूड भी थोड़ा सा अच्छा होता था बहुत बार, और कभी कभी अधिकारियों को बहुत अच्छी तरह से डांट फटकार भी दिया करते थे। हमारे सामने भी एक इस तरह का मुद्दा आया, उन्होंने फोन किया कि सीताराम तुम देखो मीना तुम्हारे पास में एक वो फाइल है उसमें उस तरह का वो मामला है, आपने क्या उसको निपटा दिया, डिस्पोज कर दिया? मैंने कहा सर अभी तो उसमें नहीं हुई ये कार्रवाई, नहीं हुआ है डिस्पोज। कि अच्छा ठीक है तुम मेरे पास में आ जाओ 1 बजे तक आ जाओ। तो उस वक्त मेरी पोस्टिंग कानपुर में थी और मुझे जाना था लखनऊ, तो मैंने उनको कहा सर कि इतने जल्दी तो संभव नहीं है, मैं तो कानपुर में हूँ, कानपुर से कम 2 घंटा तो लखनऊ में पहुँचने में ही लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं 4 बजे आइए। मैं 4 बजे के लिए जो है वहाँ से कानपुर से चला। रास्ते में फिर मुझे यही महसूस जैसे होता रहा कि मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ और परमात्मा मेरा मददगार है, मुझे सारी शक्तियाँ देने वाला है, लेकिन इस आत्मा को भी शायद कुछ ना कुछ जरूरत है, इसलिए उनको जरूरत पड़ी है मुझे बुलाने की। और मुझे बुलाने का कोई कारण नहीं, लेकिन परमात्मा की कुछ शक्ति है, परमात्मा का कुछ कोई गुण है, परमात्मा की कुछ कृपा उनको चाहिए, इसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया है। और मैं इन संकल्पों के साथ में जब वहां पहुंचा तो मैं बहुत अच्छी तरह से उमंग उत्साह और एकदम से स्थिर था कि कुछ भी वो बोलेंगे कैसे भी बोलेंगे तो मैं अपने आप को स्थिर रख सकूंगा और मैं कोई उस तरह की बात नहीं करूंगा जिससे उनका पारा और चढ़ जाए या वो फिर कुछ और उस तरह का महसूस कर रहे हैं और मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे। तो जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने बुलाया तो उस वक्त वहां पे एक और वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख सचिव गृह भी वहीं पर बैठे थे। तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ जैसे अंदर गया तो पहला तो उनको देख करके ही ये लगा कि मेरे पास में जो भी अधिकारी आते हैं और जिनको मैं बुलाता हूँ जैसे पेशी होती है तो वो इस तरह से मुस्कुराते हुए तो शायद नहीं आते। तो उनको पहला तो यही लगा तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है बैठिए मीना बैठिए बताइए तुमने वो क्या किया। तो मैंने कहा सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके दर्शन हो गए और आपसे मुलाकात हो गई। और ये कहते हुए भी कुछ अंदर से हल्का सा मुस्कुराहट चेहरे पर थी। तो और वो जिस तरह से बोल रहे थे तो उससे तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन उस तरह का हो सकता था, लेकिन मैं फिर भी बड़े संयत तरीके से, संयमित तरीके से और मुस्कुराते हुए ही बात कर रहा था। तो वो खुद ही कहने लगे प्रमुख सचिव गृह से कि देखो मैं इनको ये कह रहा हूं और ये मीना फिर भी जो है मुस्कुराए जा रहा है। तो मुझे लगा कि हाँ शायद अब मेरे ऊपर और ज्यादा गुस्सा भी हो सकता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अच्छा ये मैं मुस्कुरा रहा हूं तो कुछ विपरीत बात भी हो सकती है। लेकिन विपरीत बात ना हो करके फिर थोड़ी देर बाद में बात करते रहे, फिर नॉर्मल तरीके से बात हुई और उसके बाद में फिर कहने लगे कि अच्छा ठीक है उसको जो है आप जा करके निपटा दीजिए। तो कहने का मतलब है कि जब हमारी अंदर की स्थिति ठीक होती है तो पहली बात तो हमारे अंदर एक क्लैरिटी आती है, हमारे अंदर दूसरे आत्मा के प्रति शुभ भाव भी आता है और वो शुभ भाव, अच्छा भाव या उनके लिए एक कल्याण की बात सोचने का भाव वो तभी आ सकता है जब हम परमात्मा से जुड़े होंगे, यानी हमारा योग उस परम शक्ति से, सर्वशक्तिवान से, सर्व गुणों के दाता से होगा। तो निसंदेह रूप से हम किसी दूसरे के लिए भी भला सोच भी सकते हैं, अच्छा सोच भी सकते हैं और खुद को भी संयत रख सकते हैं। तो मैं तो अपने अनुभव के हिसाब से यही कहूंगा समय को देखते हुए संक्षेप में कि योग से हमारे लिए जो असंभव चीज है वो संभव करना संभव है, और जिस तरह से आजकल का जो टाइम है उसके हिसाब से हमें अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने की चिंता तो सबको रहती है, और अगर हमने बैटरी चार्ज नहीं की तो उसमें बहुत सारे एप्स काम नहीं कर पाते। तो आत्मा तो एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बैटरी है और उसकी बैटरी और उसका जो इक्विपमेंट है वो शरीर के द्वारा हम काम करते हैं, तो उसको चार्ज करना बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ ब्रह्मा कुमारी की जो दिनचर्या है मुझे बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है कि सवेरे सवेरे 3:30 बजे से 4 बजे से, खासतौर से 4 से 4:45 के बीच तो अमृत वेला योग का टाइम निर्धारित है और उसमें सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें वो उसको अपनाते हैं करते हैं। दूसरा उसके साथ साथ यहाँ पर सुबह सुबह श्रेष्ठ संकल्पों के लिए ज्ञान मुरली के लिए सुबह 7 बजे लगभग सभी जगहों पर ये होता है और उसमें हमें अपने हिसाब से ये महसूस होता है कि इससे ज्यादा और स्ट्रांग मोटिवेशनल लेसन कोई और हो नहीं सकता। तो उसको जरूर किसी ना किसी तरह से जो भाई बहन अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ करके और उसको शुरू कर दें। तो मैं ये कहूंगा कि अपने अंदर अपने आप महसूस करेंगे कि मेरा कायाकल्प हो रहा है, ये हर एक महसूस करेगा। और उसके बाद में बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल और श्रेष्ठ स्वमान, यानी जो दीदी ने जैसे आज सेल्फ एस्टीम का हमें जो लेसन पढ़ाया, तो सेल्फ एस्टीम के लिए परमात्मा हमें बहुत सारे स्वमान देते हैं, यानी ग्रेट थॉट अबाउट आवर सेल्फ। उसको रोजाना हम अगर याद करें और बीच बीच में अपने आप को स्मृति दिलाएं, कोई एक स्वमान को ले लें, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं पवित्रता का सागर हूं, मैं प्रेम का स्वरूप हूं, मैं सुख का स्वरूप हूं, यानी ये कोई भी अपना स्वमान हम याद करें दिन में उसको याद दिलाएं तो वो भी अपने आप को शक्ति देता है और हमारे अंदर बदलाव का बहुत बड़ा कारण बनता है। और मैं अपनी तरफ से अनुभव के हिसाब से यही कहना चाहूंगा कि मैं इस संस्था के साथ में अभी तक इतने लंबे समय से इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि मुझे यहां महसूस होता है कि जो कहते हैं ना कथनी और करनी में अंतर, यहां पर कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है और यही मैंने अनुभव किया है और ये मैं पिछले लंबे समय से देख रहा हूं। और उसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा उपाय भी है कि अगर हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं है कि हम जो कह रहे हैं उसको कर भी सकें, तो उसके लिए ज्ञान और योग का एक बहुत बड़ा माध्यम, बहुत बड़ा सहारा, बहुत बड़ा संबल हमको दिया है, जिसको अपना करके हम अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और जो हमारे कर्मों में कुशलता चाहिए, जो हमारे डिसीजंस में क्लैरिटी चाहिए, जो हमारे डिसीजंस में निष्पक्षता चाहिए, जो सबके कल्याण की भावना वाले हमें हमारे निर्णय होने चाहिए, जिनको बिना लगाव, बिना दबाव, बिना प्रभाव के हम कर सकें, उसके लिए इसको जरूर अपनाएं, अपनी बैटरी जरूर चार्ज करें और परमात्मा को साथ जरूर ले लिया करें। कभी कभी हम जब कुछ माहौल ज्यादा इस तरह का होता था तो हम मीटिंग से पहले 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठने के लिए सबको कहा करते थे, तो उससे हमारी स्थिति भी मजबूत होती थी और बहुत सारे जो अधिकारी जो सबऑर्डिनेट्स होते थे तो उनको भी एक ताकत महसूस होती थी कि हाँ, हम अब अपनी बात भी अपने सर को बता सकते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि हाँ, इनका जब मूड ठीक होगा हमारा तो मूड ठीक हो ही जाएगा। कार्य की कुशलता निश्चित रूप से उसमें जरूर बढ़ेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कॉन्फ्रेंस से। जो कुछ सीख करके जाएं, जीवन में अपनाने का कष्ट करें। ओम शांति,
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम भाई जी। अभी हमारे बीच में से प्रशांत गोयल भाई साहब विदाई ले रहे हैं, तो मैं बिंदु बहन से निवेदन करती हूँ, उन्हें ईश्वरीय सौगात दें। बिंदु बहन जी, प्रशांत गोयल भाई IAS, और आगे समय की सीमा है बहुत, तो इसलिए मैं भ्राता ललित वर्मा जी से। माता ललित वर्मा जी, आप भी IAS रिटायर्ड हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ UP में रहे और अभी हम सबके बीच उपस्थित हैं, तो मैं निवेदन करती हूँ इस टॉपिक पे आप भी प्रकाश डालें। माता ललित वर्मा जी,
ओम शांति। लास्ट स्पीकर का रोल बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, श्रोतागण और उनके खाने के बीच में लास्ट स्पीकर खड़ा होता है, कार्यक्रमकर्ताओं को भी पैकअप करना होता है, उसको एक फाइनल शेप देनी होती है। सर्वप्रथम तो मैं इस मंच पर जो भी आसीन बहने हैं या पूर्व में जो आशा दीदी कह गई, श्री हरीश जी हैं, नाथमल जी हैं, सबको अपना नमन करना चाहूंगा। ऑडियंस में बहन राधा जी हैं, जिन्होंने मुझे बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था लखनऊ में विद ब्रह्म कुमारी। ये सही है कि मैं बीच में करीब 8-10 साल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहा हूं, बट जो कुछ मूल बातें मुझे बहन राधा जी से सीखने को मिली थी, उनको एक नए स्वरूप में करीब 15-16 साल बाद दोबारा यहां देखने का, अनुभव करने का मौका मिला, जिसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय के विभिन्न पदाधिकारियों का, परम पिता शिव बाबा का बहुत बहुत धन्यवादी हूं। मैं संक्षेप में अपनी बात को स्लाइड से कहूंगा, आवश्यकता होगी, ये स्लाइडें वैसे भी आप सब लोगों ने देखी हुई है, सारी ज्यादा बातें आपको पता हैं। ये स्लाइड में बेसिकली हमने ये शो किया है कि मीडिएशन में और गवर्नेंस में क्या क्या संबंध सीधे सीधे हो सकता है। हम सब लोग जानते हैं कि साहब सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, आत्मा के विभिन्न गुणों को साथ क्वालिटीज को अगर हम डेवलप कर सकें, तो गवर्नेंस में जो अकाउंटेबिलिटी है, रूल ऑफ लॉ है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी है, उस सबको हम डेवलप कर सकते हैं। हम सब लोगों ने सुना आज दिन में भी कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ वर्च्यू या इत्यादि अन्य थिंग्स को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि 7 M's पे फोकस करना पड़ता है, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, बट इन सब में सबसे महत्वपूर्ण आदमी होता है, चाहे वो लीडर ऑफ द टीम हो या मेंबर ऑफ द टीम हो। और उन सबको लिंक करना है अगर हमें, तो इंट्रोडक्शन के रूप में जो मीडिएशन, मेडिटेशन और गवर्नेंस के बीच का लिंक है उसको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स आर एडमिनिस्ट्रेटर, हम सब लोग जानते हैं कि इट इज ए वेरी हाई वर्कलोड, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, प्रेशर, अडॉप्टेबिलिटी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि साहब हम लोग सब ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटर एट एनी लेवल वी डील विद द थिंग्स इन ए वेरी वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास आदमी कम होते हैं, उनकी स्किल्स कम होती है, हमारे पास पैसा कम होता है, रिसोर्सेज कम होते हैं। एट द सेम टाइम देर इज ए ह्यूज एक्सपेक्टेशन। हम लोग जो डील करते हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग से डील कर पाते हैं। देर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, देर इज लॉट ऑफ हिडन आइसबर्ग, केवल टिप ही हमें दिखता है। उसको ही सॉल्व करने में, उसी को फाइटिंग करने में मेजॉरिटी ऑफ हमारा जो एनर्जी है वो चला जाता है। हम सब लोग बेसिकली पिछले 15-20 साल से तीन तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की कोशिश करते हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच आई इंक्लूड ओनली टू थिंग्स, हेल्थ एंड एजुकेशन। देन वी वर्क ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां हम लोग कोशिश करते हैं जो लास्ट पर्सन ऑन द लैडर है उसको देखने की कोशिश करें। एंड लास्ट जिस पे मेरे ख्याल से हम सब लोगों की एनर्जी ज्यादातर स्पेंट हो रही है, दैट इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, की जिसमें हम कहते हैं बिजली, पानी, सड़क उपलब्ध कराएं। तो मे बी हम सब लोगों को अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करनी है और उन प्रायोरिटीज को या क्लियर कॉन्शियस को डेवलप करने के लिए मे बी मेडिटेशन भी है वेरी वेरी यूजफुल टू। क्वालिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो एक्सपेक्टेड एटलीस्ट होती हैं वो थोड़ी सी मैंने गिनाई हैं, बट मैं फिर कहूंगा कि साहब वी ऑल हैव टू हैव ए प्रायोरिटाइजेशन। और आज दिन में पहले बात हो रही थी कि साहब अगर थिंक टैंक है, हम लोग अपने एम्प्लॉय के साथ बैठ सकते हैं, जिस तरह सिंटेक्स कंपनी ने उससे बेनिफिट उठाया। या आई रिकलेक्ट अनदर स्टोरी जिसमें कार का जब उन्होंने बनाई तो उसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई थी, उन्होंने कहा साहब इसको बाहर निकालने के लिए गेट तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने स्मॉल वर्कर के उन्होंने कहा साहब टायर फ्लैट करके निकाल लो ना, गेट तोड़ने की क्या जरूरत है। तो आइडिया कैन कम फ्रॉम ए वेरी वेरी स्मॉल सोर्स ऑल्सो, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू लिसन टू इट। क्वालिटीज एडमिनिस्ट्रेटर, काउंटरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम बाय मेडिटेशन, आई हैव ट्राई टू मेक सम लिंक। मैं कुछ पर्सनल एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैं साहब कमिश्नर इलाहाबाद था, 2007 का कुंभ के साथ मेरे को एसोसिएशन का मौका मिला था। हम सब लोग जानते हैं इट इज ए ह्यूज कंग्लोमरेशन ऑफ द पर्सन, इट इज ए ह्यूज सोशो कल्चरल फंक्शन। और हर सरकार चाहती है वो विंडो ड्रेसिंग करे कि साहब यूपी प्रयागराज कितना अच्छा है, आइए आप स्नान करिए, अपना जो रिचार्जिंग है उसको करिए, स्पिरिचुअली प्लस अदरवाइज करिए। तो उन सब फंक्शंस में आई कैन एश्योर यू हम सब लोग बहुत कुछ भगवान भरोसे चलते हैं। जिस तरह का पब्लिक आती है इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। हम सब लोग भी मिला लें तो कुल मिला के 20,000 से 25,000 लोग होते हैं और मैक्सिमम 50,000, ऑल फोर्स एवरीबडी। एंड द विजिटर का जो ट्यून होता है वो 50 लाख से 5-5 करोड़ तक होता है पर डे। तो वी ऑल वर्क मोर और लेस। जब हम लोग जाते थे उसमें तो सुबह एक प्रेयर करके जाते थे, भगवान हम लोगों ने तो जो किया बट असली आपको संभालना है। आज सिमिलर सिचुएशन में बताता हूं, 93 में आई वॉज पोस्टेड एस डीएम ऑफ आजमगढ़, गोरखपुर, दीज ऑल एरियाज ऑफ ईस्टर्न यूपी आर फ्लडेड बाय रिवर्स एवरी मॉनसून सीजन। पता नहीं कितनों ने आपने घाघरा को देखा है, घाघरा जब उफान पे होती है तो इट इज ए वेरी वेरी स्केरी सीन। और उस घाघरा के बाढ़ पीड़ितों के लिए आई स्टिल रिकलेक्ट माई एडीएम वॉज डेड अगेंस्ट कि मैं जाके वहां सोऊं। आई स्टेड देयर फॉर 4 डेज। नंबर ऑफ माई एम्प्लॉइज सॉ स्नेक बट आई वॉन्टेड टू हैव ए टीम वर्क देयर। आई वॉन्टेड कि हमारी पूरी टीम इन्वॉल्व हो, हम सब लोग मिलकर उसको करें। देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स लाइक दिस बट शॉर्टेज ऑफ टाइम वुड नॉट परमिट मी टू गो थ्रू दीज ऑल थिंग्स। बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन वी ऑल नो, वी हैव बीन लिसनिंग ऑल द टाइम। आई वुड सम अप सेइंग दिस कि इन केस वी
as administrator want to increase our focus, clarity and develop leadership, we will have to go for meditation. It is old saying that information, training, experience gives you knowledge. We all have got knowledge. Knowledge just gives the idea what to do or what not to do. Skill gives us the tools, how do we perform or how do we speak. And that skill is the basic thing which meditation will tell you. And ultimately, your attitude decides how much to do. And your wisdom decides whether to do or not to do. ये तीनों चीजें हैं जो skills हैं, attitude है और wisdom. They can be improved only through meditation, getting a link with the Almighty God. और ultimately जैसा कहा गया human touch की बात, self esteem की बात, उस सबको हमें अपने ध्यान में रखना पड़ेगा. Our father of the nation long time back said कि administrator को ये नहीं treat करना चाहिए कि he is supreme. The supreme person is the customer or your citizen. आपने अगर देखा तो पहले रेलवे स्टेशनों पे लगा रहता था कि साहब आपका जो कस्टमर है वही सबसे वैल्यूएबल है आपके लिए, और उसको नहीं मानेंगे तो रेस्ट ऑफ थिंग्स आर जस्ट यूजलेस. तो टू सम अप आई वुड जस्ट से कि इट हैज बीन अ वेरी वेरी एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस टू बी हेयर इन दिस ट्रेनिंग कोर्स एंड टू लर्न वेरियस न्यू थिंग्स. एंड आई सिंसियरली फील that I would like to implement this on myself and maybe I will try to spread it out to others. Thank you. Thanks a lot.
Thank you. Om Shanti. Lalit Verma Bhai Ji ko bahut bahut dhanyavad. Ab meditation ka time hai. To main adarniya Bindu Didi Ji se nivedan karungi ki wo Rajyog ka abhyas karayen. Bindu Behen, aap Zonal Coordinator Administrative Wing hai. Sirsa se aaye hai.
ओम शांति. अभी तक हम सभी आवाज की दुनिया में घूम रहे थे. अभी कुछ समय के लिए आवाज से परे की दुनिया का भी अनुभव करना चाहेंगे. ये भी एक यात्रा है. जैसे हम एक दो के पास जाते हैं तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, यातायात का साधन चाहिए. ये हमारे जो मन के विचार हैं ये सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है भगवान के साथ मिलने का. मेडिटेशन को वर्टिकल जर्नी कहा जाता है. हॉरिजेंटल जर्नी हम रोड डिस्टेंस तय करके जाते हैं, भले एरोप्लेन से भी जाए लेकिन डिस्टेंस नीचे का ही होता है. लेकिन इसको वर्टिकल जर्नी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें ऊपर भगवान की छतर छाया में जाना होता है. तो एक बार एक बच्चे ने एरोप्लेन नहीं देखा था, वो अपने पापा को कहता मुझे एरोप्लेन देखना है. तो ले जाते हैं एयरपोर्ट पे, दूर से कहते हैं कि वो देखो वो रहा एरोप्लेन. कहते ये तो बिल्कुल छोटा सा है. थोड़ा और नजदीक ले जाते हैं, कहता हाँ अब थोड़ा बड़ा लगता है. फिर बिल्कुल पास चले जाते हैं तो कहते इट्स सो बिग, ये तो बहुत बड़ा है. तो ऐसे ही भगवान के घर में आप सब आए हैं. जब दूर दूर से देखते हैं तो भगवान का प्यार क्या है, उसकी रहमत क्या है, उसकी छतर छाया क्या है, वो हमें ऐसे छोटा छोटा लगता है. लेकिन जैसे जैसे हम नजदीक आते जाते हैं तो उसकी रहमत और उसका प्यार और उसकी छतर छाया कितनी बड़ी है, उसका अनुभव आप तीन दिन से यहाँ कर रहे हो. और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप रोज दिन में 4-5 बार मेडिटेशन करते हो, हर सेशन के बाद मेडिटेशन करते हो, ताकि आपको बहुत अच्छा सा अभ्यास हो जाए. अभी भी सेशन के भी हम एंड के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो अभी कुछ क्षणों के लिए आप सब अपने ध्यान को सभी तरफ से हटाकर अपने पास ले आइए. स्वयं को देखें कि मैं कौन हूं। इस शरीर को चलाने वाली इस मन के अंदर संकल्पों की रचना करने वाली भावनाओं को महसूस करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन दी सेंटर ऑफ फोरहेड, इस मस्तिष्क के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ प्रकाश का सितारा हूं। मेरा ओरिजिनल संस्कार, मेरा ओरिजिनल स्वरूप, मेरी ओरिजिनल क्वालिटी शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर मेरे द्वारा फैल रहे हैं। उन फैलते हुए वाइब्रेशंस को फील करें, देखें। अभी मैं मन बुद्धि के द्वारा उस रूहानी यात्रा के लिए प्रस्थान कर रही हूँ। इस हड्डी मांस के शरीर से निकल सूर्य चांद सितारों से पार जा रही हूँ अपने असली घर की ओर। पॉइंट ऑफ लाइट इस चमकते सितारे को ट्रेवलिंग करते हुए देखें, कैसे यात्रा करता हुआ जी आत्मा सितारा अपने घर की ओर जा रहा है। इस यात्रा को फील करें। मैं आत्मा सितारा पहुंच गई अपने असली घर परम धाम शांति धाम सचखंड में। यहाँ लाल सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। सामने विराजमान है मेरे मीठे प्यारे भगवान शिव बाबा। मैं आत्मा उनके सन्मुख जाकर बैठ गई हूँ। सर्वशक्तिवान प्यार के सागर, आनंद के भंडार, वरदानों के दाता, भाग्य विधाता के सन्मुख उसके सारे गुण और शक्तियों के फुहारे मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रहे हैं। फील करें कैसे उस महाज्योति से निकल निकल कर शक्तियों प्रभु प्यार की किरणें मुझ आत्मा सितारे में भर गई है। और मैं भरपूर हो गई हूँ। एकदम आनंद से भरपूर, शक्तियों से भरपूर, शांति से भरपूर, प्रभु प्यार से भरपूर, अभी भरपूर हो करके मैं आत्मा सितारा वापिस सूर्य चांद को क्रॉस करते हुए इस आकार लोक में पहुंच रहे हूँ। हड्डी मांस के शरीर में भरकुटी के मध्य मैं आत्मा सितारा विराजमान हो गई हूँ। लेकिन अभी पूरी भरपूरता के साथ प्रभु प्यार की वो किरणें मेरे द्वारा चारों तरफ फैल रही हैं। अभी सृष्टि मंच पर इन शक्तियों के साथ मैं अपने कार्य को और भी बढ़िया तरीके से करूंगी। अब इस मेडिटेशन की शक्ति से मेरे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी, कर्म कुशल होंगे, सुखदायी होंगे, बोल भी, कर्म भी और संकल्प भी। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु दीदी को। एवं मु अनुरोध करुची राजयोगी आदरणीय भ्राता हरीश जी से, आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में भाई बहनों को कुछ प्रेरणाएं दें।
ओम शांति, ओम शांति। मंच पर विराजित हमारे सभी महानुभाव तथा आप सभी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले 3 दिन से बहुत अच्छी ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाहर पानी की वर्षा है और यहाँ ज्ञान की वर्षा है। आप सबको अच्छा लग रहा है? जो कहते हैं हम कॉन्फ्रेंस में आए, इतना दूर से आए, अपना अमूल्य समय निकाल करके आए, लेकिन यहां आना सफल हुआ। जो कहते हैं हमारा यहां आना सफल हुआ, यहां से हम कुछ ज्ञान का खजाना लेके जा रहे, थोड़ा एक बार हाथ ऊंचा करेंगे। बहुत अच्छा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा, दो हाथ ऊंचा करते हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, ताली बजाइए। हाँ, मैं तो कहता हूं परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप शिव पिता और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिसको हम बाप दादा कहते हैं, उनके आशीर्वाद से ये हमारा सम्मेलन सफल हुआ है। और मैंने देखा है कि इस सम्मेलन के समय मंच पर जो भी हमारे महानुभाव आए, बीके वक्ता आए, चाहे बाहर से जो मेहमान आए, उन सब ने बहुत अच्छी बातें, अनुभव की बातें हम सब के सामने रखी है। मैं समझता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, यहाँ सामने ही कहीं हमारे बाहर के स्पीकर्स बैठे हैं। आज भी मंच पर हमारे डॉक्टर ललित वर्मा जी और भी अन्य साथी, हमारे सीताराम मीना जी, सब बहुत ही प्रभु वक्ता है, माना एक लर्नेड स्पीकर है। देखो कितना अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार करके लाए, लेकिन समय का अभाव के कारण उन्होंने शॉर्ट में हम सबको सुनाया। ऐसे ही मैंने देखा, मैंने सुना, क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम है वो पीस ऑफ माइंड चैनल में लाई जा रहा है। भले हम यहाँ उपस्थित शायद न हो, दूसरे कारोबार में बिजी थे, लेकिन हमने एक एक स्पीकर को सुना है ना, चाहे हमारे विनोद भाई जी है और भी शशि कुमार जी है और विभूति रंजन जी है और कई स्पीकर्स हैं। सब लोगों ने बहुत अच्छी बातें, अपने अनुभव युक्त बातें सुनाई है। मैं तो आप सभी जो भी मेहमान भी आए हैं और दूर दूर से आए हैं, नेपाल से आए, भारत के अन्य स्थानों से आए, मैं आप सभी का भी बहुत दिल से धन्यवाद भी अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों के आने से ही सम्मेलन में चार चांद लगा है। अगर आप ही नहीं आए तो सम्मेलन कैसे सफल होता। इसलिए अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। और मुझे आशा है, विश्वास है कि ये जो तीन दिन में आपने जो कुछ सीखा है, मैं भी इस संस्था से पिछले 45 ईयर से जुड़ा हूँ, 35 ईयर्स हो गया मुझे यहाँ हेडक्वार्टर में रहने का एक मौका मिला है, भाग्य मिला है। हम लोगों को भी ड्यूटी दी जाती है, जिम्मेवारी दी जाती है, लेकिन हमें ये सिखाया जाता है कि जो भी कार्य हम करें एक सेवा भाव से करें, निमित्त भाव से करें, नम्रचित होकर के करें, निर्माणचित होकर के करें, तो कभी भी हमारे मन के अंदर जो कभी टेंशन आता है वो कभी नहीं आएगा। हम लोग खुशी खुशी से हर्षित होकर के सारा कारोबार करते हैं। और यहाँ आपने देखा होगा तीन चार दिन के स्टे के अंदर कि इस संस्था में भी हमारे सभी जो भी भाई बहने हैं, चाहे भोजन परोसने वाले हो, बनाने वाले हो, चाहे हमारे कॉन्फ्रेंस के आयोजन में मददगार साउंड लाइट वीडियो जो भी है, बना ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि बहुत सारा कारोबार होता है और ऑटोमेटिक रूप से सभी बहने भाई मिलकर के इतना अच्छा प्यार से सेवा कर रहे हैं, तो ये एक सेवा भाव आप देख रहे होंगे, देख रहे हैं ना आप। तो ऐसे ही भगवान ने आप सभी को इतने अच्छे स्थान पर विराजमान किया है, अच्छी पोस्ट दिया है दूसरों के कल्याण के लिए। क्योंकि जब हम कहते हैं भाई एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस में जो सेवा करने वाले हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनको भी लास्ट में तो सर्विस ही आता है, तो जब ये सर्विस शब्द हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी यूज करते कि जो भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, जहां भी बिठाया, लेकिन मेरे भाव में ये, मेरे मन में ये भावना होनी चाहिए कि मुझे किसी न किसी रूप से कायदे में रहकर ही दूसरों का कल्याण करना है, दूसरों के लिए सहयोग देना है, दूसरों की सेवा करनी है। तो ये सेवा भाव से जब हम कार्य करते तब ईगो नहीं आएगा, एंगर नहीं आएगा और लोगों की दुआएं हमें मिलती रहेगी, ये हम सबका अनुभव है। तो मैं यही दो लाइन कहना चाहूंगा कि आप लोग आए बार बार आए। हम तो कहते हैं हर साल में एक बार हम लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जब दिल चाहे। ये माउंट आबू एक हमारा हेडक्वार्टर है, हम लोग हेडक्वार्टर में भी प्रशासक वर्ग को बुलाते हैं, साथ में भारत के कई स्थानों पर भी हम लोग प्रोग्राम आयोजित करते हैं, और सभी जगह हमारे बाबा के घर है, मना सेंटर है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। पहले दिन भी मैंने बताया था, भगवान ने हम सबको 24 घंटा दिया, हमें केवल अपने लिए आधा घंटा एक घंटा निकालना है। तो ये मन की जो शांति है, खुशी है, आनंद है, वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कर्म भी करेंगे, लेकिन कर्म के साथ साथ योग को जोड़ेंगे ना, तो आप देखना कितना फर्क हो जाएगा। फिर हम खुशी खुशी से सब कार्य करेंगे, लोगों की दुआएं भी हमें मिलेगी। बाकी समय भी बहुत हो चुका है। अभी हमारे आदरणीय नथमल भाई जी आप सबका धन्यवाद अदा करेंगे, उसके बाद आप लोग भोजन करके फिर 9 बजे आपको आना है। आपके लिए विशेष कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, विशेष ORC से भी ग्रुप आया है जो आपके मनोरंजन के लिए ये सारा कार्यक्रम रखा है। बहुत बहुत दिल से आप सभी का धन्यवाद है, और बार बार यहाँ पधारे यही हमारी उम्मीद है। ओम शांति।
ओम शांति। धन्यवाद हरीश भाई जी। अब निवेदन करती हूँ नथमल भाई जी से, सबको वोट ऑफ थैंक्स प्रदान करें।
ओम शांति। ये 3 दिन की राष्ट्रीय महासम्मेलन बहुत ही सुंदर तरीके से चला, और बहुत ही विद्वान आत्माओं ने, मेहमानों ने, भाइयों ने, दीदियों ने हम सबको एक नई ऊर्जा, नई शक्ति प्रदान की। मुझे आशा है वो नई ऊर्जा लेकर के अपने कार्यस्थल पर जाएंगे तो सफलता आपके चरण चूमेगी। आज इस महासम्मेलन का अंतिम दिवस हम कह सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ से आप सबकी शुरुआत होगी कि किस प्रकार से इस मेडिटेशन के द्वारा अपने जीवन को सशक्त करेंगे और अपने प्रशासन तंत्र को, व्यवस्था को भी सशक्त करेंगे। ये हमारी उम्मीदें आप सबसे है। इस कार्यक्रम को बहुत ही सफल बनाने के लिए उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद जिन्होंने हमें शक्ति दी, ये कार्य बहुत सफल हुआ। उसके साथ साथ हमारी परम आदरणीय, परम सम्मानीय आशा दीदी जी, वो जरूरी कार्य बस हम समक्ष नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बातें हमें बताई। जो इस हमारी विंग की चेयरपर्सन है, बहुत ही सुप्रसिद्ध वक्ता हैं, हमारी नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स के आप डायरेक्टर भी हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ आज इस कार्यक्रम के अंदर हमारी कीनोट स्पीकर वीना दीदी, आप भी सिरसी कर्नाटक से आकर के अपने वचनों के द्वारा हम सबको एक बल भरा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रशांत जी, उनको भी शायद जरूरी कार्य बस छुट्टी लेनी पड़ी। आपने सुना कि 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर के कैसे अपने आप को सशक्त बनाया, और अब बारी है उनको, आप सबके सामने उन्होंने रखा भी कि मैं अभी घर को भी सशक्त बनाने के लिए जा रहा हूं, ये उन्होंने वायदा भी किया। तो हमारे प्रशांत जी का भी बहुत बहुत थैंक्स। हमारे सीताराम भाई जी हमारे समक्ष बैठे हैं, आप भी लंबे सुड़े समय से जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर अपने अनुभव के आधार से अवगत कराया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ललित वर्मा जी, कितनी ऊंची पोस्ट पर रहते हुए कितना निर्माणचित और कितना शॉर्ट में आपने अपनी बातों को बहुत ही मूल्य देकर के रखा। ललित भाई जी का भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारी आदरणीय बिंदु दीदी जी खास सिरसा से पधारे हैं, आपने योग के द्वारा हम सभी को कुछ ही क्षणों के अंदर आत्मा को शक्तिशाली बनाने की विधि सिखाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हरीश भाई जी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की चेयरपर्सन आशा दीदी हैं, लेकिन हरीश भाई जी इस विंग की रीढ़ की हड्डी हैं। जिस प्रकार से शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम खड़े नहीं हो सकते। हमारे हरीश भाई जी का भी इस विंग के लिए इतना बड़ा योगदान है और इतना बैलेंस्ड प्रोग्राम भी करते हैं, साथ साथ में हमारे विंग के साथ जुड़े हुए भाई बहनों का भी बहुत सम्मान और बहुत आदर करते हैं, उनको भी बहुत सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हरीश भाई जी का भी बहुत बहुत थैंक्स। और हमारी लीना बहन इस कार्यक्रम के लिए खास भुवनेश्वर से पधारी हैं और इस प्रोग्राम का संचालन बहुत सुंदर तरीके से किया, इसलिए हमारी आदरणीय लीना दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भुवनेश्वर में एक सब जोन संभालती हैं और इस कार्यक्रम के शुरुआत में जिन्होंने भी बहनों ने भाइयों ने स्वागत के लिए और उन्होंने फूल के द्वारा गुलदस्तों के द्वारा तिलक के द्वारा स्वागत किया, वो मुलन के टीम पूरे चार दिन से उन टीम लगी हुई है, तो उस टीम का भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स है। और जो बच्चों ने डांस किया इसके पहले भी और आगे भी जो कल्चरल प्रोग्राम होगा, तो ऐसे बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे सामने आप देख रहे हैं लाइट साउंड कैमरा कितने अथक होकर के हम लोग हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट लेट से आए, लेकिन बिफोर टाइम आकर के अपना तंत्र संभाल लेते हैं और हमको सुख सुविधाएं देते हैं, तो इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और इन सब के पीछे जो हमारे सामने नहीं है, जो भोजन की व्यवस्थाएं में दे रहे हैं, किस टाइम में वो बनता है, हम तो टेबल पे पहुंच जाते हैं और कितना प्यार से वो खिलाते हैं और कितना प्यार से परोसते हैं और कितना प्यार से बना रहे हैं, तो उन आत्माओं का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और सबसे ज्यादा जो हमारे सम्मुख हैं, क्योंकि आप नहीं होते तो ये मंच भी नहीं होता, तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं आप जैसे भाई साहब ने कहा कि हर बार आपके लिए निमंत्रण खुला है और जरूर आप आकर के अपने को सशक्त बना करके अपने प्रशासन तंत्र को अपने परिवार को सशक्त बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।
ओम शांति। हम सबको धन्यवाद देने वाले आदरणीय नथमल भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं निवेदन करती हूँ हमारी बहनों से, बिंदु दीदी और वीना दीदी जी से, कि आए हुए मेहमानों को शॉल उड़ाकर टोली दे करके उनको सम्मानित करें। आज कल्चरल प्रोग्राम भी है 9 बजे से, तो सभी भाई बहने जल्दी से जल्दी आकर के पहुंचे ताकि 9 बजे प्रोग्राम कल्चरल प्रोग्राम शुरू होगा। कल सुबह भी 6:15 बजे से एक्सरसाइज है और 7 से 8 बजे तक मेडिटेशन सेशन भी होगा। सुबह 6:15 एक्सरसाइज, 7 से 8 मेडिटेशन सेशन है। कल नाश्ते के बाद साइट सीन के लिए भी सबको जाना है और परसों 9 तारीख को सुबह मेडिटेशन सेशन भी रहेगा। तो ये आप सबके लिए अनाउंसमेंट था। सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। 1 मिनट परमात्मा की स्मृति में साइलेंस में बैठ करके आज के कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। ओम शांति।
परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान।